मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی احکام پورے کرو اور اللہ کی مخلوق کے بھی حقوق کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ظاہری احکام بھی ہیں جو ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دل کے احکام بھی ہیں۔ آپ کو اپنے دل کو بھی دائیں بائیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، تو غلام کا مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس میں دل بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو دائیں بائیں لے کے جائیں۔ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹ رائٹ۔ لیفٹ رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی سے لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا وہی القلب۔ فرمایا، خبردار سنو، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار بار میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں دوبارہ یہاں تنبیہ کروں گا۔ دیکھو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک، وہ خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب، تو کیا مطلب؟ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کولیسٹرول والی چیزیں نہ کھائیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے؟ ہے بھائی؟ بھائی کوئی ڈاکٹر اگر یہ حدیث سنے گا، وہ کہے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ اپنی ہارٹ کی کیئر کریں، آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی متاثر ہو رہی ہے، پراٹھے کھانا چھوڑ دیں، سگریٹ پان گٹکے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر تو یہی تشریح کرے گا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ दिल का मसला है आपका, और हदीस में आता है कि दिल जब खराब होता है तो पूरी बॉडी खराब होती है, दिल सही होता है तो पूरी बॉडी सही होती है, लिहाजा आप ऑपरेशन करवा के अपना दिल ठीक कर लें। लेकिन आप क्या समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है? बोलो ना भाई, क्या हो गया ना? क्यों आपने फौरन कह दिया कि भाई नबी की मुराद ये नहीं है? वजह कि आपको मालूम है कि मेडिकल साइंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू बोलो नहीं है। नबी का जो टॉपिक है वो मेडिकल साइंस नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सेहत के हवाले से जो चीजें। ये बार बार मैं तंबीह इसलिए करता हूं कि फिर इस तरह की चीजें आती हैं सामने कि हकीम लोग हदीस का सहारा ले रहे हैं और हदीस में आता है ये, इसमें ये शिफा है, तो अब उसका कुछ कहवा बना के पिला देंगे आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन चंद चीजों के बारे में हमें बताया है कि इसमें शिफा है, कुरान ने भी बताया है, लेकिन कैसे है, कितनी मकदार में खानी है, किसको खानी है और किसको उल्टा नुकसान होगा, ये तफसीलात हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती। ये तो मेडिकल साइंस का पूरा एक शोबा है, तो ये डॉक्टरों और जो माहिर हकीम है उनसे पूछने की चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तो बताया कि हलाल क्या है हराम क्या है, पैसा कमाने में हलाल तरीका क्या है और हराम तरीका क्या है, और यह भी बताया कि तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश तिजारत की तरफ ज्यादा आप उम्मत को लाना चाहते थे, लेकिन कौन सी तिजारत हलाल है कौन सी हराम ये तो बता दिया। कमाना कैसे है क्या ये बताया कि किस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है भाई? वजह क्या है भाई? ये तो माहिर मईशत से आप पूछेंगे, मईशत के माहिरीन से आप पूछेंगे, जो आजकल बिजनेस चल रहा है उसके माहिरीन से पूछेंगे, रफी भाई से पूछेंगे, रफी भाई चावल का काम वो क्या मल्टीग्रेन, इनकी दुकान का व्लॉग बनाया था ना, मल्टीग्रेन आटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 25 बोरियां कम से कम फ्री बनती हैं हमारी, मजाक कर रहा हूं, वो हमने व्लॉग बना दिया ना। तो सीरियस नहीं हो जाए, ये मजाक ही है। तो ये ताजरों से पूछा जाएगा, भाई जौ का आटा ज्यादा चलेगा मार्केट में, गंदुम का आटा चलेगा, हर एक की एक फील्ड है। पैगंबरों का हदफ क्या है, पैगंबरों का मौजू क्या है, पैगंबरों का टॉपिक क्या है, मजहब की हमें जरूरत क्यों है? भाई हिदायत सीधा रास्ता, गलत और सही में फर्क, वो रास्ता जो इंसानों को जानवरों से जुदा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। आपकी हिदायत के बगैर आप एक सेहतमंद इंसान तो बन सकते हैं, आप एक पैसे वाले तो बन सकते हैं, अच्छे इंसान आप नहीं बन सकते। अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे हकीम भी बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहले क्या है भाई? अच्छा इंसान बनना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि एक छोटा सा टुकड़ा है वो ठीक रहता है तो पूरी बॉडी ठीक रहती है, तो इस टुकड़े से जिस्मानी दिल मुराद नहीं है, इस टुकड़े से रूहानी दिल मुराद है, जिसमें ख्यालात आते हैं, जिसमें चाहतें छुपी हुई हैं। हम अगर ये गोश्त का दिल निकाल के किसी और के लगा दें और प्लास्टिक का दिल लगा दें तो वो सारी चाहतें किसमें आएंगी? उसी प्लास्टिक में आ जाएंगी। आशिक मिजाज लोग आते रहते हैं मेरे पास, इश्क खत्म नहीं हो रहा, तो उसका हल क्या है भाई? ये दिल में है ना इश्क, ये दिल निकाल के किसी और को दे दे, तेरे यहां कुछ दूसरे का दिल लगा देते हैं, तो इससे फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा भाई, वो तो जो भी दिल आएगा उसमें ख्यालात शुरू हो जाएंगे। अब यहां एक मेडिकल साइंस का मसला है, ख्यालात तो दिमाग में आते हैं, दिल में थोड़ी आते हैं। दिमाग चेंज करेंगे तो बंदा चेंज हो जाएगा। तो खूब समझ लो कि दिमाग में ख्यालात आते हैं, दिल में नहीं आते। ख्यालात का मरकज दिमाग है। यहां भी वही बात है, इस्लाम मेडिकल साइंस की बातें नहीं करता। देखो जब हम रोते हैं तो आप डॉक्टरों से पूछें कि आंखें रोती हैं या दिमाग रोता है, डॉक्टर कहेगा दिमाग रोता है, आंख नहीं रोती। आंख पे उस रोने के असरात जाहिर होते हैं। तभी दिमाग सो रहा हो, आंख को आप गम की बात सुनाएं तो आंख रोएगी? बोलो, आंसू निकलेंगे? नहीं, क्योंकि दिमाग जो असल में जिसका काम है रोना, वो सो रहा है। लेकिन जब दिमाग रोता है तो असरात कहां आते हैं? सबसे पहले बोलो, आंखों पे आते हैं। इसलिए उर्फ में निस्बत आंखों की तरफ की जाती है, दिमाग की तरफ बोलते क्यों नहीं यार, नहीं की जाती, क्योंकि असर किस पे आ रहा है? आंख पे आ रहा है। तो निस्बत हम आंख की तरफ, आंखें गमजदा हैं, आंखें रो रही हैं। जब इंसान खुश होता है आंखों में एक चमक पैदा होती है, आंखें हंस रही हैं, आंख बता रही है कि खुश है। जब हम हंसते हैं तो असल में दिमाग हंसता है। खुश कौन होता है? दिमाग। जाहिर कहां से होता है? दांतों से। आप अपनी बत्तीसी दिखाना शुरू कर देते हो, जैसे बहुत से लोग दिखा रहे हैं माशाल्लाह। जुम्मे का दिन है, साफ करके आए हैं वे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते क्या है भाई, दांत हंस रहे हैं। तो दांत नहीं हंस रहे होते, हंसता कौन है भाई? दिमाग हंसता है। तो ऐसे ही जब भी हमें किसी से मोहब्बत हो, किसी से नफरत हो, कोई जज्बात हो, तो जज्बात पैदा दिमाग में होते हैं। सबसे पहले उसका असर कहां होता है? दिल पे होता है। दिल खुश होता है, दिल की धड़कन खौफ से भी तेज होती है, खुशी से भी तेज होती है। खुशी वाली तेजी अलग होती है, खौफ वाली तेजी अलग होती है। इसलिए शरीयत ने निस्बत दिल की तरफ की है। खुश होने की निस्बत, गमजदा होने की निस्बत, मोहब्बत की निस्बत, नफरत की निस्बत किसकी तरफ की है? दिल की तरफ। और सिर्फ शरीयत ने नहीं, पूरी दुनिया में दिल की तरफ निस्बत की जाती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस डॉक्टर कहते हैं भाई ये इस्लाम ने क्या कहा है, दिल चाह रहा है, दिल थोड़ी दिमाग चाहता है। तो ये वो लोग हैं जिनको अकल परस्ती का हैजा हो जाता है। एक होती अकल का इस्तेमाल, एक होता है अकल का इस्तेमाल का अकल परस्ती का बोलो हैजा। ये वही लोग हैं कि जब आप आके कहो कि मैं तीन प्लेटें खा गया बिरयानी की, तो वो कहेंगे प्लेटें क्यों खाई, खानी तो बिरयानी चाहिए थी आपको। अब इसको क्या समझाए? कहेंगे भाई हमने मजाजन कह दिया कि वो प्लेटें, असल में वो खाई हमने क्या थी, बिरयानी। तो फिर ये बोलो ना बिरयानी खाई है, तुम तो मुंह से बोला है तुमने प्लेटें खाई हैं। तो आप बोलो भाई उर्फ में ऐसे ही कहा जाता है, क्वांटिटी बताने के लिए प्लेटों की तरफ निस्बत की जाती है। अरे मैं उर्फ नहीं मानता, बेअकली की बातें। मैं अगर किसी जबान में कोई लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है तो गलत को ठीक करो, ना ये कि आप गलत ही को चलते रहो। तो प्लेटें कोई नहीं खा सकता, लिहाजा आइंदा बोलो बिरयानी खाई है मैंने। तो ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? अकल परस्ती का हैजा हो गया है, कोई जहानत नहीं है, ये हमाकत है। इट इज कॉल्ड, बोल तो ले यार, हमाकत। तो शरीयत भी निस्बत किसकी तरफ करती है? दिल की तरफ। जज्बात का के असरात दिल में होते हैं। दिल मुर्दा होता है, मुर्दा। जब दिल मुर्दा हो जाता है तो जज्बात खत्म, फिर चीजों का असर खत्म, असरात भी खत्म होता आते हैं। तभी तो शरीयत ने कहा है वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जवानी में अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि जवानी में दिल जवान होता है। जवानी में मोहब्बत भी टूट के होती है, नफरत भी टूट के। तो यही मोहब्बत अल्लाह से भी टूट के हो सकती है जवानी में। दुनियाए मुर्दार का इश्क जैसे टूट के होता है जवानी में, बुढ़ापे में इश्क होता है भाई? सोचता है आदमी के इश्क करना मुनासिब रहेगा या नहीं रहेगा। जवानी में इश्क भी होता है, बहादुरी भी होती है, بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کارنامے سر انجام دے یا نہ دے، لیکن جذبات بہرحال ہوتے ہیں. چار شادیوں کے جذبے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کر پائے نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جذبے بہرحال ہوتے ہیں. تو جوانی میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اکثر جوانی میں انہوں نے توبہ کی ہے اور جوانی میں اللہ کو منایا انہوں نے. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے بارے میں بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. دل کی طرف نسبت کیوں؟ کہ جذبات کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ جذباتی محبت بھی ہو اللہ تعالی سے. دیکھو محبت کی دو قسمیں ہیں. پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر اس پر آؤں گا. محبت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، ٹاپک چینج نہ ہو جائے. محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کسی سے بھی محبت ہوتی ہے ہمیں دو طرح کی ہوتی ہے. پہلے تو میں اس حدیث کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نبی نے فرمایا کہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو انسانی جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک. دل جب خراب ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا؟ خراب. دل ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. اب یہ دل کا عمل ہے، یہ ہاتھ کا آنکھ کا عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں ویلیو کس چیز کو دی جاتی ہے؟ آنکھوں کے عمل کو، ہاتھ کے عمل کو، پاؤں کے عمل کو. چوری کرنے تو نہیں جا رہا، آنکھوں سے غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا، یہ بھی ضروری ہے. لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہوں، ہے بھائی، ہر وقت کھوپڑی پہ بحریہ ٹاؤن سوار ہو، ہر وقت دولت 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 دماغ میں گوبر کی طرح گھسی ہوئی ہو، اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. یہ تو بہت بڑی برائی ہے بھائی. اب کسی دنیا پرست آدمی سے کہا جائے کہ یار تمہارے دل میں تو اتنی دنیا، ہر وقت پلاٹ اور جائیدادیں کرتے رہتے ہو بیٹھ کے، تو جواب میں کہ میں کوئی برا کام کرتا ہوں؟ مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا میں زنا کرتا ہوں؟ کیا میں شراب پیتا ہوں؟ بھائی یہ شراب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جو دنیا مسافر خانہ تھی، جو فنا ہونے کی جگہ ہے، جو ختم ہونے کی جگہ ہے، اس سے آپ دل لگا رہے ہو. یہ حوث ہے. حوث بری چیز ہے، لالچ بری چیز ہے. ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو اور سیٹوں سے محبت کر لو کہ بھائی بہت اچھی سیٹیں ہیں، اور سلیپر میں سفر کر رہے ہو اور برتھ سے آپ کو محبت ہو جائے، تو یہ حماقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو خود مرنے والا ہے اس پہ کیوں مر رہا ہے بھائی؟ تو ایک آدمی چوہے پہ عاشق ہو جائے، ہے بھائی، تو کیا کہا جائے گا؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے، تیری نظر کا ذوق بلند. دیکھو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ عاشق ہو گئی تو پبلک کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں، وہ تو ان کو ایک خادم کے طور پہ دیکھ رہے تھے. تو عورتوں نے کیا کہا؟ امراۃ العزیز ترابد فتاہ عن نفسی، اپنے گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی، اپنے گھر کے خادم پہ عاشق ہو گئی. یہ تو ایک رائل فیملی سے، ایک بادشاہ کی یا ایک اچھے خاندان کی عورت ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک گھر کے لڑکے پہ جو خدمت کے لیے ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہم تو دیکھتے ہیں بہت بڑی گمراہی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ پیغمبر ہیں, اور اللہ نے جتنا حسن اس کائنات میں بانٹا اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو اتنی بات تو ان عورتوں کے تانوں سے پتا چل گئی نا جو یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی, بھائی انسان اپنے جیسوں سے محبت کرتا ہے. تبھی تو اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے, ضرورت میں کتوں سے محبت کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. انگریز میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ انگریز کتا پالتا تو ہے بچوں کی طرح, اسلام کہتا ہے بچوں کو پالو کتے کی طرح, یعنی انگریزوں کو کہتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, انگریز بچے نہیں پالتا کتے پالتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, جس طرح کتے پالتے ہو ایسے بچے پالو, اور جیسے بچے پالتے ہو ایسے کتے پالو. پالتے ہی نہیں بچے, تو وہ بچے پالتے ہیں ضرورت کے وقت, بہت شدید ضرورت ہو, جب 50 سال کے ہو گئے بڈھے ہونے لگے تو اب چلو یار ایک آدھ ہو جائے. تو ایسے ہی اسلام نے بھی اجازت دی ہے کتا پالنے کی, بھائی اگر ضرورت ہو تو ایک آدھ کتا کیا خیال ہے رکھ لو, کوئی چور کا خطرہ ہے, کوئی خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ضرورت میں اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی ہے نا, اس ضرورت میں بھی وہ بچہ نہیں پالتے. بہت شدید ضرورت کہ اب چانس ختم ہو رہا ہے, بوڑھے ہو رہے ہیں, پتا ہے کہ اب مزید اب پیدا نہیں ہوا تو اب ہو نہیں سکتا, پھر مجبوراً ایک آدھ, کبھی آدھا ہوتا ہے کبھی ایک کبھی پونے دو, تو پھر وہ پال لیتے ہیں. تو جو محبت کتے کو دینی چاہیے, سوری جو محبت بچے کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہے ہیں, کتے کو دے رہے ہیں. وہ اسلام کا یہی مطالبہ انگریزوں سے کہ بچوں کو کتوں کی طرح پالو, سمجھ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا بھائی, یہ بات کتے والی کہاں سے آ گئی, یہ کتے والی بات کہاں سے آ گئی, پتہ نہیں انگریز ہیں. ہاں چوہے پہ, اب اسلام نے کتا پالنے کی اجازت دی, کتوں سے محبت دل دینے کی کتوں کو اجازت نہیں دی, کتوں پہ عاشق ہو گئے. لوگ کہتے ہیں وفادار اتنا ہے اتنی خدمت کرتا ہے, بھائی وہ اس میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے خدمت کی, وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا, یہ وہ اپنے اختیار سے نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ اس کی گلی میں دوسرا کتا آ جائے تو برداشت نہیں کرتا. اگر یہ اس میں انسانیت ہوتی نا, انسانیت, تو وہ مالک سے بھی وفا کرتا, اور اگر کوئی آ رہا ہے اس کے دال پانی میں شریک ہو رہا ہے دوسری گلی کا بے روزگار کتا, ہر گلی میں روزگار وہ نہیں ہوتا جو ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں روزگار اچھا ہو, تو دوسرا بے روزگار کتا آ گیا اس گلی میں تو کتا پن دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا اس کے ساتھ. تو جو بری خصلت اللہ نے ڈال دی وہ بری اس میں ہمیشہ سے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. جو اچھی کوالٹی ڈال دی وہ اچھی ہے, وہ تو اپنے اختیار سے نہیں ہے. اس لیے کتے اچھے برے نہیں ہوتے, نہ محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کام لینے کے قابل ہوتے ہیں, اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے. اللہ نے کتوں کو کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے, کہ جو ضرورت کا کام ہے ان سے لو شکار کرو, پہرے داری دو, ان کے اندر ہم نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ پہرا اچھا دے سکتے ہیں. یہ بس ہم نے کیا کیا کہ وہ اس کو تو اتنی محبتیں شروع کر دی, بلی پہ دل آئے ہوئے ہیں لوگوں کے. ایک کلینک میں میں تھا, اپنی بکری لے کر گیا تھا, بیمار تھی, تو ایک خاتون بلی لے کر آئی ہوئی, وہ ویسا رو رہی ہیں جیسے کوئی جنازہ ہو, گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہو. بس کرو یار, تھی بڑے بڑے گھر کی, اب کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہے, اس خاتون کو بھی نہیں پتا ہوگا میری بات, پرانا قصہ ہو گیا. اتنا رو رہی ہو بھائی تم, مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے جب ٹائم پہ شادی نہ ہو اور ٹائم پہ بچے نہ ہو, پھر جو سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بلوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی ہے فیملی پلاننگ کے عذاب, سمجھ رہے ہو, جس میں انہوں نے تمہیں ڈال دیا, اور تم خوش بھی ہو और फिर मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हो, वो नहीं इरशाद भट्टी कह रहा था इतने बच्चे कौम पे रहम करें, मैंने कहा कौम पे रहम ही किया है फिलहाल, यही मेरे पास एक पैकेज था कि कौम को जवान दे दिए हमने, ग्रोथ रेशो बढ़ता है तो जवानों का रेशो बढ़ जाता है, आबादी तो बढ़नी है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, फर्क यह कि एक खास मकदार में बढ़ना जरूरी है ताकि जवानों के रेशो के का रेशो बूढ़ों से ज्यादा हो, कमाने वाले ज्यादा खाने वाले कम। हां आबादी बढ़ने से नुकसान जब होगा जब वसाइल कम हो, वसाइल कम हो, तो वसाइल कम है नहीं, रिपोर्ट ही है, वसाइल तो इतने हैं कि समझ नहीं रहे हैं इतने वसाइल हैं। कहते हैं ना वो पानी की कमी हो रही है जमीन में, भाई साहब ये लतीफे कहीं और जाके छोड़ा करो, यानी इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं जमीन में पानी कम हो रहा है, इतना पानी समंदरों में जाया हो रहा है आपकी सोच से भी ज्यादा, इसको डैम बना के रोको। कोई कहीं भी किसी किस्म के वसाइल की कहीं भी कमी नहीं है। ये मंजन बहुत पुराना था, बाहर की यूनिवर्सिटियों में ये मंजन नहीं बेचा जाता, ये यहाँ पुराना सड़ा हुआ माल जो बिक रहा है ना यूनिवर्सिटियों में, वहां ये मंजन बिक रहा है। वो एक दफा हमारे रिटायर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था ना कि इतना पानी जमीन से हम निकाल रहे हैं और बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा पानी। तो लोगों ने कहा मुफ्ती साहब देखो कैसी कैलकुलेशन की है, तो कुछ कौम पे रहम करो, आप नस्ल रोक लो, इतना पानी जमीन से निकल रहा है। मैंने कहा भाई साहब कभी भी दुनिया में तहकीक ऐसे नहीं होती कि इतना पानी निकल रहा है, जा कितना पानी रहा है और उसमें से निकल कितना पानी रहा है, जाते में कहीं बता रहे कि इतना जा रहा है, जो बारिशों से जा रहा है वो बहुत ज्यादा है, और वो जो दरियाओं में जाया हो रहा है समंदरों में वो तो बहुत से भी ज्यादा है, तो उसको रोक लो। अल्लाह जब इंसानों को पैदा करता है तो उसके लिए रिस्क का इंतजाम भी तो किया है ना उसने, अब वो तो लंगर बांट रहा है बारिशें बरसा के, आप ही का प्याला नहीं है, आप ही का डैम नहीं है भाई, आपके बच्चे थे 15-20, हुकूमत ने गाड़ी भेजी के यार लंगर बांटो, उसके दो बच्चे हैं उसको दो थैलियां पकड़ाओ, इसके 10 हैं इसको 10 पकड़ाओ, अब वो थैलियां फेंक रहे हैं, आपके पास कोई टोकरा ही नहीं है उसको कैश करने के लिए, वो जाया हो रहा है सारा, तो ये किसका कसूर है, ये तो आपका अपना कसूर है। हमारे मुल्क में पानी इतना ज्यादा है कि हमारे हुक्मरान शर्म से डूब के मरना चाहें तो भी अस्तगफिरुल्लाह, यानी हम बहुत ज्यादा पानी है। एक तो मेरे मुंह से बार दफा गलती से गलत चीजें निकल जाती हैं, ये कह रहे हैं वो निकलती सही है। खैर तो हुक्मरानों को हम क्या बुरा कहें, खुद भी तो ऐसे ही हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये जो हम सुबह शाम कहते हैं ना वजीर आजम गलत, सदर गलत, फलाना गलत, ढिमकाना गलत, फरमाया कि हमें थोड़े दिन के लिए हुकूमत दे दी जाए हम में से कोई भी फिरौन से कम नहीं निकलेगा। वो तो अभी इख्तियारात हैं नहीं फिरौन वाले, समझ रहे कि नहीं, अभी है गरीब आदमी क्या जुल्म करेगा, इख्तियारात ही नहीं है, जहां इख्तियारात आए जिनके पास आते हैं तो वो फिरौन बनते हैं, अब्बा का जब इंतकाल होता है तो बहन की विरासत चट कर जाते हैं। ये याद रखो जो एक रुपए खा रहा है एक अरब भी वही खाता है, और जो एक रुपए एक अरब नहीं खाता वो एक रुपए भी नहीं खाता। चोरी में ये कभी नहीं देखा जाता कि ये चप्पल चोर है या ये बैंकों से डकैतियां करता है, चोर को चप्पल चुराने का मौका मिले वो चप्पल चुराएगा, उसको बैंक में डकैती का मौका मिले वो बैंकों में डकैतियां करोड़ों अरबों रुपए लेके लूटेगा। इसलिए ईमानदार लोगों में ये नहीं होता एक रुपए की हिफाजत करते हैं ये एक करोड़ की हिफाजत करते हैं, जो करते हैं वो एक करोड़ की करेंगे, जो नहीं करते वो जो एक रुपए की भी नहीं करते। तो दिल जो है दिल, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि इस दिल को गलत इस्तेमाल मत करो। दिल का इस्तेमाल क्या है, सोचना, जगह देना मोहब्बत या नफरत, तो इस दिल को कंट्रोल करने में क्या चीज है, सबसे पहले मोहब्बत, तमाम मोहब्बतों में अल्लाह की मोहब्बत सब पे गालिब भारी हो। जाना उसके पास है भाई जिसके पास जाना है, लोग सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं, अमेरिका कमाने के लिए जाते हैं, बीवी बच्चे उनके यहां होते हैं, तो क्या अपनी जगह से रिश्ता तोड़ देते हैं? वो कहते हैं यार रिटायरमेंट के बाद जाना हमने कहाँ है, वहीं जाना है। तो मंजिल पे कभी समझौता नहीं करते वो। दूसरी बात, इस दिल में दुनियाए मुर्दार की मोहब्बत ना हो, इस दिल में हसद ना हो किसी से, बोझ ना हो, कीना ना हो। कीना किसे कहते हैं? बोझ तो मुतलक नफरत। बोझ एक ऐसी चीज है, पैदा भी होता है खत्म भी हो जाता है। कीना किसे कहते हैं? कीना का मतलब एक दफा किसी के दिल में नफरत बिठा ली, बस अब निकाल नहीं रहा उसको। उसने माफी भी मांग ली, वो ठीक भी हो गया, उसके एहसानात भी सामने आ गए। ना जी, आपको बस एक दफा उससे आपने नफरत, जैसे कीना मशहूर है ना ऊंट का, ऊंट जब किसी से नफरत करता है वो नफरत खत्म नहीं करता। कहते हैं 10 साल बाद भी उस बंदे को देखेगा ना तो उस पर हमला करेगा। ऐसे ही बहुत से लोग भी होते हैं जिनके दिल में क्या होता है, कीना। एक दफा किसी से कीना बैठ गया दिल के अंदर, बस ना खत्म होने वाला नफरतों का सिलसिला शुरू। ये अच्छी आदत नहीं है। कंजूसी, ये भी दिल की बीमारी है। बास दिल के बड़े और बास दिल के बोलो छोटे। तंग होता है दिल उनका, खर्च करते हुए जान निकल रही है। क्यों? दिल में मोहब्बत इतनी है दुनिया की कि उसकी वजह से कंजूसी आ गई, बोहल आ गया। वो एक कंजूस आदमी जो था ना, उसके घर चावल पके हुए थे। मेहमान आया तो उबले हुए चावल, बॉयल चावल लाके रख दिए उसके सामने, बॉयल चावल। मेहमान ने कहा यार ये कोई दाल होती इसके साथ, कुछ नहीं, खाली बॉयल चावल। वैसे तो आमतौर पर मेहमान के सामने कोई गोश मोश रखा जाता है, लेकिन उसने कहा चलो कुछ कुछ तो हो। बहरहाल अब खाना शुरू किया तो बेगम की आवाज आई किचन से, मुर्गी ले आऊं। समझ में आ रही है बात? मुर्गी ले आऊं। मेहमान खुश हो गया कि चलो यार चिकन भी आएगी। तो जो मेजबान था उसने कहा कि नहीं अभी नहीं लाओ। तो मेहमान को ख्याल गुजरा शायद चावल खत्म होने का इंतजार कर रहा है कि पहले ये खत्म हो जाए फिर। तो वो बेचारे फीके चावल बॉयल उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किए। फिर आवाज आई अंदर से, मुर्गी ले आऊं। शोहर ने कहा कि नहीं अभी नहीं। मेहमान ने कहा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जब तक चावल खत्म नहीं होंगे मुर्गी बोलो नहीं आए, ये उतर नहीं रहे मुंह से इसके और ठोस रहे ना। फिर आवाज आई, मुर्गी ले आऊं, बेगम की आवाज आई। इसने कहा नहीं अभी नहीं, अभी चावल बाकी है। बहरहाल जी इसने बड़े बड़े निवाले बना के ठोसा, खत्म कर दिए चावल। फिर आवाज आई जी मुर्गी ले आऊं, शोहर ने कहा ले आओ। बड़ा खुश हुआ, पता चला जी जिंदा मुर्गी आई है। मेहमान ने पूछा ये क्या है भाई? कहते हैं ये जो चावल गिर गए हैं ना ये वो खाएगी, मुर्गियों को हम ये वाला दाना खिलाते हैं। यानी जो कंजूसी मेहमान के साथ हो रही है वही जानवरों के साथ भी हो। उसको बाजरा खरीद के नहीं खिलाना, तो मेहमानों का बचावा खिला। तो ये क्या है, ये किसकी बीमारी है भाई? असल में बोलो दिल तंग। मुझे गुस्सा इस पर आया कि ठीक है आप ले आओ मुर्गी, उसको बताओ तो सही कि जिंदा मुर्गी है, उसको क्यों टेंशन में रखा हुआ है। अच्छा कितने तेज होते हैं ये कंजूस लोग, वो कह सकती थी कि ये जिंदा मुर्गी लेकर आऊंगी, लेकिन वो जानकर इसलिए कहा कि ताकि ये कमबख्त ये जल्दी जल्दी खाए, कुछ और ना मंगवा ले ये। तो दिल की बीमारी क्या है भाई? कंजूसी। आज लोग नजर आते हैं हमें माशाल्लाह, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं होता, जान निकलती है, गिन गिन के रखते हैं और हर वक्त गिनते रहते हैं बैठ के, इतने हो गए अब। दिल बड़ा करो यार। और इस कंजूसी पे डाला पता है किसने? क्या बोलो यार, आप बोलोगे मुझसे घुमा घुमा के एक ही टॉपिक लाते हैं। जो बेगैरत आदमी, जो कमबख्त अपनी औलाद पैदा करने को तैयार ना हो कि इसको खिलाना पड़ेगा, वो किसी पे क्या खर्च करेगा। आज बच्चे क्यों रोके जा रहे हैं, खर्चा ज्यादा होगा। अपनी औलाद पर जब दिल इतना कंजूस हो जाए, और ये फैमिली प्लानिंग वालों ने इस अजाब में डाला है, तो किसी बेवा से शादी करके उसके बच्चे कौन पालेगा भाई। ये अपने पैदा नहीं कर रहा था है भाई कि खर्चा बढ़ेगा, और इस्लाम तरगीब दे रहा है बेवा तलाक याफ्ताओं के बच्चे भी पालो, तो इस्लाम की तरगीबात असर करेंगी इसके ऊपर। जो अपना खून है उसे रोक रहा है, जो इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा उसको रोक रहा है, जो इसका घर आबाद करेगा उसे रोक रहा है कि रोकड़ा खर्च ना हो जाए, पैसे खर्च ना हो जाए। और आप तरगीब दे रहे हैं उसको कि बेवा से शादी करो, दो बच्चे ले आओ, चार बच्चे ले आओ, छह बच्चे ले आओ। तो फैमिली प्लानिंग वालों ने जितना कंजूस बनाया है ना इंसान को, गोरों ने, अंग्रेजों ने, ये सारी तहरीकें वहां से चली हैं। जितना कंजूस इन कमबख्तों ने बनाया है, इतना इंसान को कंजूस किसी ने नहीं बनाया। इस्लाम तो दिल बड़ा करने का हुक्म देता है। इस्लाम कहता है कमाओ भी, खर्च भी करो। ये लोग निकाह से क्यों रोकते हैं, बीवी लाने से क्यों रोकते हैं भाई, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो पहले स्टेबल हो जाओ, पहले अपने पांव पे खड़े हो जाओ, पहले इतना कमाओ। इस्लाम ने इसी कंजूसी की जड़ें काट डाली। इस्लाम ने कहा ना भाई, जिसको तुम घर में बीवी बना के लाओगे, किसी की बेटी होगी ना, वो तो बाप भी तो खर्च कर रहे हैं ना, तो तुम खर्च करो। ए अल्लाह पैसे नहीं है, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, यकून फुकरा युग्निहिमुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह गनी कर देगा। इस्लाम सिर्फ खर्च करने की तरगीब नहीं देता, पॉलिसियां बना के देता है, ठीक है ना, कौम को खर्च करने पर लाता है। अंग्रेज सिर्फ ऊपर ऊपर से तरगीब देता है, काम सारे वो कर दिए उसने जिससे इंसान कंजूस बन जाए, काम सारे वो करके गया है। रिश्ते तोड़ दिए उन्होंने, जब रिश्ते टूट गए तो खर्च तो रिश्तों पे होता है सबसे ज्यादा, फैमिली सिस्टम ही तबाह हो गया, खर्च किस पे करें, कुत्तों पे खर्च कर रहे होते हैं उनके यहां। तो भाई हुकूमत अगर टैक्स ना लेना तो बुड्ढे सड़कों पे मरेंगे, माजूर लोग सड़कों पे मरेंगे। हमें चंद सखी दिखाए जाते हैं कि वो बिल गेट्स ने इतना ये अस्पताल बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मेजॉरिटी की हालत बहुत खतरनाक है। और जो आपको खर्च करते हुए नजर आएंगे वो भी कोई हातिम ताई नहीं होते, उनके पास इतना होता है और आगे कोई नस्ल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कितनी अय्याशी कर लेगा आदमी। वो भी अपनी तोंदे भर के सब कुछ बना बनू के अपने चार्टर तैयारे खरीद के जब बच जाता है तो चलो यार एक अस्पताल बनाओ इंसानियत के लिए। हमारे यहां जो खर्च करने का जज्बा है, गोरे को उसकी गोरा उसकी गर्द को भी नहीं पहुंचा, गर्द को भी नहीं पहुंचा, तो पहुंच भी नहीं सकता। जो अपनी औलाद पैदा करने के लिए तैयार ना हो के खर्च करना पड़ेगा, वो बाकी क्या खर्च करेगा मेरे भाई। काफिर में कोई खूबी नहीं है इस्लाम के मुकाबले में, कुछ जाहिरी चंद खूबियां होती हैं जिनको देख के हम बहुत ज्यादा मुतासर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है दिलों में तेल। जो खुदा का नहीं को नहीं मानता मेरे भाई, पैदा करने वाले का इंकार कर दे, वह क्या रह गया। तो कंजूसी किस कहां की बीमारी है बोलो, दिल की। हार्ट स्पेशलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक आपको आगा खान में सिविल हॉस्पिटल में जिना हॉस्पिटल में मिलेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट, वो आपको बताएंगे आपकी हार्ट बीट सही है या नहीं है, आप दो शादियां कर सकते हो या नहीं कर सकते, दिल में इतनी ताकत है या नहीं है। अच्छा, हार्ट के जो अक्सर स्पेशलिस्ट हैं उनमें दो की ताकत नहीं होती, कमाल की बात है, उनके दिल में इतना तप्पड़ नहीं होता। जब भी किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाए ना, आप कहें मेरा ऑपरेशन डॉक्टर साहब वो डॉक्टर करेगा जिसकी दो। खैर ये मैं टॉपिक से हट रहा हूं, क्या करूं, मैं भी शरारती आदमी हूं ना तो हटता रहता हूं टॉपिक से। कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है ये नहीं सुधरेगा मेरे बारे में, कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है जब मैं दो शादियों के बाद जो तपे में है ना मुझसे, जो खवातीन खासतौर पे, खवातीन ने लिखा होता है ये नहीं सुधरेगा, ये बहुत डीट आदमी है, ये नहीं सुधरेगा। तो बोझ का पैदा हो जाना, कीना दिल में, तो ये हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं मादी दिल के, इस दिल के होते हैं जो हमारे सीने में धड़क रहा है, ये बताएंगे भाई ये दिल आपका मजबूत है कमजोर है क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन जो अल्लाह वाले लोग हैं, अहलुल्लाह हैं, वो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं रूहानी दिल के। और ये खूब समझ लो, दिल को रूहानी तौर पर सेहतमंद करना ये पैगंबरों की तालीमात के बगैर मुमकिन नहीं है। और जिन्होंने पैगंबरों से सीखा और फिर उन्होंने पैगंबरों के सीखे हुए हुओं से सीखा, तो ये सिलसिला सदियों से आज तक चला आ रहा है। तो इसलिए दिल दिल बनता है अहलुल्लाह की सोहबत में, समझते हो? ये ऐसे है जैसे कोई शख्स गाड़ी चलाना सीखे और इंटरनेट पे देख के गाड़ी चलाने का तरीका लिखे और गूगल पे सर्च करे, तो क्या सुबह शाम वो तरीका रट्टा लगा के याद करता रहेगा, गाड़ी चलाना आ जाएगी उसको? नहीं आएगी उसको। भाई उंगली से पकड़ के जब तक कोई स्टेयरिंग पे नहीं बिठाएगा अपने साथ, कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, वो गाड़ी चलाना नहीं सीखेगा। ऐसे ही दिल दिल बनता है अल्लाह वालों की सोहबत से, जिनका पहले से बना हुआ हो दिल, उन साहिब दिल के साथ बैठने से क्या होता है, दिल बनना शुरू होता है। ये तकरीरों से नहीं बनता, तकरीर से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तभी इस्लाम में हमेशा से अल्लाह वालों की सोहबत की बहुत अहमियत रही है, बहुत अहमियत। पहले बुजुर्ग को जांचने के लिए क्या देखा जाता था, भाई इसका ताल्लुक किस बुजुर्ग से है। मुझे एक बात बताओ, कोई ताबीई सहाबी के बराबर हो सकता है? तो सहाबी में क्या खास चीज थी कि कोई ताबीई कभी भी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता? क्या बात थी सहाबी में? नबी की सोहबत उठाई थी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप कह सकते हो नबी की तालीमात ली थी, तालीमात तो ताबीईन में भी ने भी ली थी, और ताबीईन में ऐसे उलमा थे जो बाद सहाबा से भी इल्म में ज्यादा थे, बाद सहाबा से भी इल्म में ज्यादा थे, ऐसे भी ताबीईन गुजरे हैं, इबादत में बाद सहाबा से ज्यादा थे, लेकिन फजीलत किसको हासिल है? सहाबी को। क्यों भाई? पैगंबर की सोहबत में जो चंद लम्हे उन्होंने गुजार लिए, उसका अल्टरनेट अब क्यामत तक नहीं हो सकता। कोई तबा ताबिई ताबिई के बराबर हो सकता है? हम क्यों इतनी बहस करते हैं इमाम हुनीफा ताबिई थे या नहीं थे? भाई अगर ताबिई होना साबित हो गया कि सहाबा की जियारत की, तो बहुत बड़ा मकाम मिल गया। अच्छा, बाद लोग इसमें भी बहस करते हैं, इमाम अबू हनीफा का ताबिई होना साबित नहीं। जिन बड़े हजरत ने दावा किया ना आप ताबिई थे, तो याद रखो मुस्बित को हमेशा नाफी पे तरजीह होती है। मुस्बित और नाफी का फर्क क्या है? एक आदमी कहता है कि मैंने अंडा मोड़ पे जलेबियां बटती हुई देखी हैं, दूसरा कहता है मैंने नहीं देखी है। तो जिसने नहीं देखी हम कहेंगे भाई उस वक्त नहीं बट रही होंगी, उसने ये थोड़ी क्या 24 घंटे जलेबियां बटती रही हैं। जो किसी खबर का दावा करता है ना, तो उस दावा करने वाले की खबर को माना जाता है, जो उसकी नफी कर रहा है उसकी तावील की जाती है। हां, कोई ऐसी खबर हो जो लोगों से मख्फी रह ही ना सकती हो, जैसे अल्लाह ना करे कहीं धमाका हो गया, अब एक कह रहे धमाका हुआ है दूसरा कह रहे नहीं हुआ, तो फिर नहीं वाले की बात और दावे की बात बराबर होगी, क्योंकि धमाका कोई दो चार लोग नहीं सुनते, तो जब होता है तो सारी दुनिया को पता चलता है। लेकिन जलेबियां अगर कहीं बटी हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ख्याल है? तो भाई ये कह रहा है नहीं बटी, तो हो सकता है भाई तुम जब हो उस वक्त नहीं बट रही हो। तो जिन आइमा ने दावा किया, मुहद्दिसीन ने दावा किया कि इमाम अबू हनीफा ताबिई थे, उनका दावा है कि आपने चंद सहाबा की जियारत की है, और जिन्होंने कहा कि नहीं थे, हम कहेंगे आपके सामने नहीं की होगी उन्होंने। खैर, ये एक इल्मी बहस है, लेकिन मेरा मकसद अभी बताने का ये है कि क्यों इतनी इस पे बहस होती है कि ताबिई थे या नहीं थे। भाई ताबिई की फजीलत तबा ताबिईन पर ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि ताबिई ताबिईन सोहबत किसकी उठाई है? सहाबी की। صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا, اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے, غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑا ہوا ہے, بھول گیا میں نام صحابی کا, شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے, بصرہ میں گھر فروخت ہوا, انس ابن مالک تھے غالباً, نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا, اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے, انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے نے بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں, 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں ہے, تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا, تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں, صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا. کہا گھر لے رہا ہے, گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو, میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑوس, کوئی مجبوری ہوگی ان کو, ورنہ وہ نہیں چھوڑتے. تجھے میں صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں, صبح شام تیری زیارت, تو زیارت کرے گا ان کی, سیکھے گا ان سے. تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی. اور تھی کیا ہے اسلام میں, تبھی تو ہم اپنا سلسلہ بیان کرتے ہیں بھائی. ہم نے صحبت اٹھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی, انہوں نے لمبے عرصے صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھولی رحمہ اللہ تعالی کی. کبھی آپ ہمارے دادا پیر کے حالات سنو, عبد الغنی پھول پھولی رحمۃ اللہ علیہ کیسے عبادت گزار. باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا, جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا, بڑا خوبصورت شہر, اسکول کالج یونیورسٹیاں, کھلے ڈلے روڈ, بہترین. جیسے میں آسٹریلیا گیا نا میلبرن, بہت خوبصورت کنٹری, خوبصورت شہر. پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا میں. اترا تو ایک ہفتے تک رفیع بھائی کا بھی تجربہ ہے, آدمی حیران رہتا ہے, خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے, گٹر ہی نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ہے ان کے. سب ایک دم اوکے کی رپورٹ نا, صاف ستھرا, نیٹ کلین, گرینری زبردست. ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا, وہ پبلک ٹوائلٹ تھا کہیں جنگل ونگل میں, کہیں راستے میں. وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی, پبلک ٹوائلٹ ہوگا وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا, یعنی میں کیا مثال دوں. اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا. ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی, بہت صاف ستھرا, اور میں آ کے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں. بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا, میں ویڈیو بنا کے لایا, یہ میرے پاس ثبوت ہے, یہ دن ہے, یہ ٹائم ہے, یہ واش روم دیکھو گندا, یہ گندا گندا. تو کوئی انگریز سنے گا بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے. صحیح ہے, ہمارا ملک گندا, بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا. کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے, اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی, اتنی گرینری دیکھی, کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے. انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا ہو اور دیوار پہ جا کے لگا ہو, یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے. یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو, ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون, ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی, وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے, میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی. اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں, اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے, اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم, یہ دیکھو, تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے, تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے, بہت پیارے تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے, ان کا تقوی, ان کی تہجد, ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا, ان کی تسبیحات, ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو, ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں. اور میرے دادا, میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں ویسا نہیں ہوں, میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, ان کا تقوی, اللہ کا خوف, ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے, सब भाई हमने मुशाहिदा किए हैं, तुम्हारा तो कमबख्तों कोई बाप ही नहीं है रूहानी, जिसका कोई बाप नहीं होता वो दूसरों के बापों में कीड़े बोलो निकालता है, जिसका अपना बाप होता है उसको डर होता है इसके बाप को गाली दूंगा तो ये मेरे बाप को गाली देगा। हाँ जो बेचारा बगैर बाप के पैदा हुआ नसब ही ना हो वो सुबह शाम कीड़े निकालने के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। तो हमारे शेख के शेख थे हजरत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह, तो बहुत इबादत गुजार थे, बहुत अल्लाह वाले। तिलावत के वक्त उनकी कैफियत क्या होती थी, गरेबान खोलते थे, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर पैदा होती, बहुत ज्यादा इबादत गुजार। फिर उनके शेख थे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, जिनकी वफात के वक्त कई लोगों ने बताया उनके अरीब करीब कि उनकी दो उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी। ये उनके सवाने में भी है, क्योंकि इन दो उंगलियों से तहरीर के जरिए सारी जिंदगी दीन की खिदमत की है। सैकड़ों तसानीफ हैं उनकी जिनसे उम्मत में ने फायदा उठाया। तो ये सिलसिला हमारा तो सहाबा तक पहुंचता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों इतनी ताकीद, भाई जब तक किसी अल्लाह वाले की सोहबत ना हो आपके पास इल्म तो आ सकता है, सही इल्म नहीं आ सकता। सही इल्म, देखो इल्म का सही होना जरूरी है, बेशक थोड़ा हो वो फायदा पहुंचाएगा, गलत इल्म के अंबार अगर आपके पास जमा हो जाए ना। मालूमात और इल्म में फर्क होता है, कुछ किताबों के पलंदे जमा हो जाए इंसान के पास रतबो याबिस खुशकुतर जमा कर ले, उसको ये ना पता हो उसमें सही क्या है गलत क्या है, तो वो गुमराही फैलाएगा। वो सही इल्म जब तक अहलुल्लाह की सोहबत ना हो, और उस अल्लाह वाले की जिन्होंने अपने से बड़े किसी अल्लाह वाले की सोहबत ना उठाई हो, और उसकी जिन्होंने उससे पहले किसी की सोहबत ना उठाई हो, उसके बगैर सही इल्म नहीं आता इंसान के पास। मालूमात का वो एक, जैसे कुरान ने मिसाल दी है, कमा सलील हिमारी यहमिलु असफारा, गधे पर भी किताबें लादी जा सकती हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो सही इल्म नहीं है, अमल नहीं है, ऐसे है जैसे गधे पर आपने किताबें लादी हों। तो उनकी मालूमात से कभी मुतासिर नहीं होना चाहिए। पहले लोगों के पास इल्म थोड़ा था, सही इल्म होता था, आज मालूमात के वो गठरियां हैं, मालूमात की गठरियां, इल्म नहीं है। तो ये जो दिल इंसान का दिल बनता है ये अहलुल्लाह की बोलो सोहबत। हाँ फिर हर एक में अलग सलाहियत है, कोई निखर जाता है, कोई हमारे जैसा नालायक बन जाता है, शादियों में डाल देता है लोगों को। हमारे शेख अगर जिंदा होते बोलते मैंने तुझे इसलिए बैत किया था तू लोगों को शादियों पर डाले। फिर मैं एक घंटा वजाहती बयान जारी करता हूं कि हजरत मेरी नीयत यही है अल्लाह से जोड़ना, जब दो करेंगे जुड़ेंगे किससे, डायरेक्ट किससे ताल्लुक कायम होगा, अल्लाह से। दुनिया मुसाफिर खाना लगेगी आपको, सुलूक की 17वीं मंजिल पहले दिन ही तय हो जाएगी। खैर इस पे भी एक अलग टॉपिक है, अभी फिर मैं बार बार आ जाता हूं, वही ना तू नहीं सुधरेगा। तो दिल बनता है अहलुल्लाह की सोहबत से, तभी हम कहते हैं भाई तबलीग में वक्त लगाओ, उसमें भी अल्लाह वालों की सोहबत मिलेगी आपको। सुबह शाम क्या बातें होंगी, अल्लाह से होता है भाई, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह पे एतमाद आएगा, अल्लाह पे तवक्कुल आएगा, कुछ अल्लाह की बातें करोगे, दिल में कौन आएगा, अल्लाह आएगा। इल्म उलमा से सीखो, इल्म उलमा से सीखो, मसाइल का इल्म किससे सीखा जाएगा, उलमा से। सिर्फ मसाइल का इल्म नहीं, शरीयत में किस फजाइल की क्या हैसियत है वो भी उलमा से। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं, हमारे एक दोस्त थे तबलीग में, करोड़पति माशाल्लाह, उनकी महाना आमदन 1.5-2 करोड़ रुपए होगी। अब तबलीग में वक्त उनका बहुत लगा हुआ, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन, ये बातें बहुत करते थे, करनी चाहिए। एक दिन गपशप लगाए मेरे साथ बैठे हुए खाना खा रहे हैं। मैंने कहा आप की आमदन कोई अपनी आमदन बताता नहीं है, तो मैंने ये नहीं पूछा आपकी आमदन कितनी है, मुझे पता था कि पता नहीं बताएं ना बताएं, किसी से पूछना भी नहीं चाहिए, ये पकड़ा जाता है बाल दफा, पकड़ा ऐसे जाता है वो बीवी को जाके बता देता है इसकी। तो फिर बेगम को जब पता चल जाए तो फिर मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही इतना खर्च कर लो बेगम के ऊपर, अल्लाह ने जितना दिया उसके हिसाब से खुद ही खर्च करो, ताकि वो पूछे ही नहीं भाई जितना है खर्च हो रहा है। तो कहने लगे मैं इतना कमाता हूं। तो मैंने कहा आप इसको डबल भी तो कर सकते हैं बड़े आराम से, आपको तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका तो तजर्बा इतना है, ऐसे जनरल स्टोर चंद और खोल लें, मुलाजमीन को बिठा दें उसमें। कहने लगे क्या जरूरत है, अब ये है इल्म तो नहीं, यानी अल्लाह की मोहब्बत तो है, दुनिया को मुसाफिर खाना भी समझते हैं, लेकिन मुसाफिर खाना समझने का मतलब नहीं समझते। वो मतलब तो भाई उलमा बताएंगे, मुसाफिर खाना समझने का मतलब क्या है। कह रहे मैं इतना कमा रहा हूं, मैं क्यों दो चार जनरल स्टोर और खोल लूं, तो मेरी आमदन डबल हो जाएगी, तो क्या करना है मैंने। फिर कहने लगे ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, मुफ्ती साहब आप ही के बयान में सुना है, तबलीग में भी हम कहते हैं अल्लाह से होते हैं, अल्लाह के अलावा नहीं होता, तो इतनी क्या जरूरत है मुझे पैसा डबल करूं मैं। तो मैंने उनसे कहा कि जरूरत तो इसकी भी नहीं है जो आप कमा रहे हो 1 करोड़ रुपए, इसकी जरूरत है। मैंने कहा हम तो नहीं कमा रहे, हमारे बारे में उड़ा दिया किसी ने, मुफ्ती साहब हर महीने यूट्यूब से 1 करोड़ कमाते हैं, उड़ाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने कहा हम तो नहीं कमा रहे इतना, तो आपको क्या जरूरत है। मैंने कहा 15,000 में आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा, वैसे भी वो जरा भारी जिस्म के थे। मैंने कहा आपको तो वैसे भी गुर्बत में आपकी सेहत ज्यादा अच्छी होगी, जितने गरीब रहोगे उतनी सेहत आपकी बोलो ज्यादा, आपको तो एक वक्त खाना मिलना चाहिए, 2 वक्त तो हम जैसों के लिए है, आपके लिए कितना है, 1 टाइम खाना, दूसरा मिले ही नहीं, ताकि आप हैंडसम एंड स्मार्ट बन जाओ, दुबले हो जाओ, बारीक हो जाओ आप। मैंने कहा भाई जरूरत तो इसकी भी नहीं है जो आप कमा रहे हो, बहुत ज्यादा है ये, तो ये भी छोड़ दो आप। फिर मैंने कहा भाई ये जो आप इतना कमा रहे हो ये क्यों कमा रहे हो आप, ताकि खर्च कर सको आप, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से पसंद है। मुसलमान जितना ताकतवर होगा माली लिहाज से इस्लाम उतना ही ताकतवर होगा, मुसलमान कमजोर होगा तो इस्लाम कमजोर होगा। मैंने कहा भाई इकोनॉमिकली मुसलमान को मजबूत होने की जरूरत है, मुल्क के लोग पावरफुल होंगे तो मुल्क पावरफुल होगा कि नहीं होगा। पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हो तो कौम तरक्की पे आ जाए, ये भी तो एक तरीका है ना, खुद भी तो हिलो जुलो कुछ करो। मैंने कहा भाई आप इस नीयत से कमाओ, हां ये नहीं कि कमाने में आप सुबह शाम एक कर दो, ना घर को टाइम, ना सेहत को टाइम, ना तबलीग को टाइम, ना दीन की दावत को वक्त, ये तो गलत है। लेकिन अगर आप आराम से ज्यादा टाइम सर्व किए बगैर डबल कर सकते हो इस आमदन को तो फिर आप करो, इसलिए कि इससे फायदा किसको होगा, मुल्क को फायदा होगा, दीनी मदरसों को फायदा होगा। शराब पीने वाले की आमदन डबल होती है तो फायदा शराब की कंपनियों को होता है कि नहीं होता, डबल बोतलें पीना शुरू कर देंगे, क्या ख्याल है। दहशतगर्दों की आमदन बढ़ती है तो फायदा दहशतगर्दी को होता है, फायदे से मेरी मुराद वो दहशतगर्दी ज्यादा हो जाती है। चोरों की के स्टेबल होने से चोरी को फायदा होता है, जालिम के मजबूत होने से जुल्म बढ़ता है दुनिया में, तो नेक लोगों के पास दौलत आने से क्या फायदा होता है, नेकी दुनिया में फैलती है भाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में खुद बाजार कायम किया ताकि तिजारत यहूदियों के हाथ से निकल के किसके पास आए, सहाबा के हाथ में आए तिजारत। कुरान ने कहा कि जब तुम हज करने जाते हो तो तिजारत पर कोई पाबंदी नहीं है, सहाबा समझते थे कि हम हज करेंगे तो हमारी हज जाया ना हो जाए अगर हम तिजारत करना शुरू कर दें, अल्लाह ने कहा कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में था कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे, यहां मुसलमानों को तिजारत का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बिजनेस बढ़ेगा, इससे इस्लाम को ताकत मिलेगी। लेकिन मुसलमानों की बिचारों की ऐसी की तैसी, हज हम करते हैं प्रोडक्ट सारी यहूदियों की बिकती है, इसलिए यहूदी कभी हमारे हज से परेशान नहीं होता। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा यहां तो सब कुछ, हत्ता के चिकन भी बाहर गैर मुस्लिम कंट्री से आ रही है। अबे चिकन तो खालिसतन मुसलमानों का काम है, हम कैसे इतमाद करें। तो पता चला कि जी पहले एक पाकिस्तानी को दिए था इन्होंने ये काम, अब पता नहीं खबर सही है गलत है, तो पाकिस्तानी को दिया था, उसने दो तीन दफा तो सही माल बेचा, उसके बाद उसने क्या कर दी, डंडी मारी। सऊदी हुकूमत ने हमेशा के लिए बैन कर दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक वाकया तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कॉपर जा रहा था यहां से, एक्सपोर्ट हो रहा था कॉपर, हमारे एक दोस्त है उनका कॉपर का बहुत बड़ा बिजनेस है, भट्टी का, मैंने आपको दिखाया भी था एक दफा व्लॉग में, वो कॉपर की ना भट्टी में डाल डाल के पिघलाते हैं, बाहर भेजते हैं उसकी प्लेटें बना के। तो उन दिनों में कॉपर को बैन कर दिया, वजह क्या है, एक हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई ने, तभी तो मैं कहता हूं कि ये हम बिला वजह जरदारी को बुरा भला कह रहे होते हैं, और अपने हुक्मरानों को, हमारे पास अगर हुकूमत आ गई तो हम फिरौन से चार हाथ बोलो आगे निकलेंगे। ये कौमी मसला है, ये कोई अकेला किसी खानदान का मसला नहीं है। तो क्या हुआ कि कॉपर जब बाहर जाना शुरू हुआ तो एक साहब ने डंडी मारी, डंडी ये मारी कि वो कुछ प्लेटें कॉपर की उनके ऊपर या चादर कॉपर की चढ़ा दी, अंदर गड़बड़ कर दी, वो जो बेचारे जितने ईमानदार ताजिर थे उनका भी बेड़ा गर्क। आपको याद है ब्लैक चिक और व्हाइट चिक फिंचेज आया करती थी, परिंदों का बिजनेस इन्होंने किया है ना, एक पेयर 5000 रुपए का बिकता था, एक चिक आती थी चिड़िया, तो उसके कान पे ना ब्लैक कलर का होता था, उसकी बहुत कीमत थी, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की थी एक जमाने में, और अल्लाह ने मुझे भी उससे दिया। अचानक बाहर पाबंदी लग गई, लोगों का लाखों करोड़ों का बिजनेस ठप हो गया। क्यों भाई, पाकिस्तानी भाइयों ने ये किया कि वो चिक तो कोई और कलर की थी, उस पर माशाल्लाह घर के जो बच्चों का मार्कर होता है ना, जो स्कूल में तो आजकल किसी काम आ नहीं रहा, तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि यार ये यहां काला निशान इससे लगा दो, इनका बस नहीं चल रहा, ऊंट पे जेबरे का कलर करके, जराफे का कलर करके जराफा बना के बेच दे। रिश्तों में तो हो रहा ही है, ब्लैक दुल्हन होती है व्हाइट कलर करके पहना देते हैं। चंद दिन पहले हमारे किसी जानने वाले की शादी हुई, मुझे बड़े फखर से बता रहे हैं, मैंने दुल्हन नहीं देखी, अब तक नहीं देखी, मैं निकाह पढ़ा रहा हूं, मैंने दुल्हन नहीं देखी, यानी मैं इतना नेक हूं कि देखी भी नहीं, बस शादी कर ली। मैं कह रहा था मेरे भाई, उसको बोला तो नहीं, अब तो शादी हो गई, अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है तेरे साथ, अल्लाह अंधेरे में नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्या ख्याल है, अल्लाह ही जाने। तो इतने नेक लोग भी हैं। फिर मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, भाई रिश्तेदारों ने तो देखा है ना, माओ बहनों ने कहा हाँ देखा है, मैंने कहा चलो गनीमत है, इतना भी नेक नहीं होना चाहिए इंसान को। तो खैर खैर बहनों माओ ने देख लिया फिर भी ठीक है, गनीमत। तो क्या कह रहा था मैं, बात किधर से निकल रही है यार, बस टाइम खत्म हो रहा है, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा, कुदरत बयान जल्दी खत्म करूंगा। तो खुलासा ये निकला मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा हिफाजत किसकी करनी है, दिल की करनी है। तो कैसे करनी है, दिल में गैर की मोहब्बत ना आने दो, हवस ना आने दो, इसकी हिफाजत करो, दौलत की हवस ना आए। कैसे आएगी दौलत की हवस, जमा करते रहने से। दौलत की हवस निकलती कैसे है, खर्च करने से, उसका उलट चलना शुरू हो जाओगे तो दौलत की हवस निकल जाएगी। दुनिया की मोहब्बत कैसे आएगी, दुनिया का सोचते रहने से, हर वक्त ऐसी वीडियोस देखो, ये हर वक्त ऐसी वीडियोस देखते रहोगे ना, ये प्लॉट वो प्रॉपर्टी ये फलाना ये इतने पैसे ये इसमें इतने पैसे, तो दिमाग खराब होना शुरू, खोपड़ी आउट होगी, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ है। ये जो YouTube पे पैसे कमाने के तरीके बता रहे होते हैं ना, ये इसलिए बता रहे होते हैं, इनके पास सारे तरीके खत्म हो जाते हैं पैसे कमाने के, अब एक तरीका रह जाता है कि पैसे कमाने के तरीके बता के पैसा कमाओ। क्या ख्याल है, इनमें से अक्सर सब नहीं, अगर उनके पास पैसा कमाने का तरीका होता तो वो तरीका इख्तियार करके पैसा कमा रहे होते, आपको कमाने के मशवरे बोलो ना दे रहे। जैसे आमिर लोग पैसा कमाने का वजीफा बताते हैं इसलिए कि उनके पास और कोई तरीका खुद है नहीं, तो वो कहते हैं चलो वजीफे बता के पैसा कमाओ। क्या ख्याल है? वजीफे बता के इसलिए पैसा कमा रहे होते हैं कि वो खुद वजीफा उनके ऊपर नाकाम हो चुका होता है। अगर वो वजीफा पढ़ के उन्होंने पैसा कमाया होता तो आपको बता के, वो तो कमाने में लगे हुए होते। जो मसरूफ आदमी होता है वो वजीफे थोड़ी बताता है, वो तो मसरूफ होता है, वो तो कमाने में लगा हुआ है। बिल गेट से आप पूछें कि यार तू मुझे वजीफा बता, कहता है टाइम नहीं है भाई, मैं इतने में इतने हजार डॉलर और कमा लूंगा। हाँ, जो बता रहा है बैठ के वो इसलिए बता रहा होता है कि उसके पास सारे वजीफे नाकाम। अब वो एक ही मंजन बेचता है, पैसे कमाने के तरीकों के वजीफे बताओ ताकि किसी और के पास आए ना आए, मेरे पास तो आए ना। ये बातें कोई नहीं बताएगा। वो है ना, वो शियों के कोई आलिम गुजरे ना, उन्होंने क्या कहते थे, ये वो स्टाइल था, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी। लुड्डन जाफरी थे ना, लुड्डन जाफरी, तो लेकिन मैं बता रहा हूं, आप देख लो यार। तो जो YouTube पे पैसा कमाने का तरीका बता रहा है, कमेंट्स में लिखा करो खुद कमा ले। कुछ सही भी होते हैं उसमें, मैं हर एक को गलत नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी भाई फारिग है। तो और फिर हर तरीका हर एक पर, कुरान ने ना देखो, हर चीज अल्लाह की मशीयत से होती है, ये तो एक तयशुदा बात है। लेकिन जहां पैसे का जिक्र आता है, इस बात का अल्लाह बहुत तस्करा करते हैं, जिसको चाहता हूं देता हूं, जिससे चाहता हूं छीन लेता हूं। भाई ये तो वैसे ही कॉमन सेंस की बात है, अल्लाह जिसको सेहत देना चाहेगा मिल जाएगी, सेहत छीनना चाहेगा छीन लेगा। लेकिन बार बार दौलत के बारे में अल्लाह क्यों जिक्र करता है? इसलिए कि दौलत में इसका बहुत ज्यादा दखल है कि बाज दफा बगैर मेहनत के दौलत छप्पड़ फाड़ के आ जाती है, और बाज दफा सारे तरीके इख्तियार करके देख लिए, यूट्यूब के सारे क्लिप देख लिए, सब कुछ करके भी वहीं का वहीं। वो एक क्लिप आया था ना, एक आदमी से किसी ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या आज की अच्छी है। उसने कहा बचपन अच्छा था यार। क्या था बचपन में? कह रहा है यार पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। कहते इसका मतलब अब पैसा है सुकून नहीं है? कहते अब दोनों ही नहीं है। बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था, शायद अब पैसा आ गया हो, सुकून ना हो। कह रहे अब क्या है, अब ना सुकून है ना पैसा है, दोनों ही चीजें। तो होता है ऐसा लोगों के साथ, लोगों के साथ। इमाम शाफी का एक शेर सुना के बस बयान खत्म करता हूं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहते हैं, इजा समिअ बिअन्न मजदूदन हवा उदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी वइजा समिअ बिअन्न महरूमन अता मा अल्ली यशरबहु फगावा फसद्दिकी। का जिसको अल्लाह दौलत देना चाहता है ना, उसके बारे में अगर तू ये सुन ले, खुशकिस्मत आदमी के बारे में, कि उसने कोई टहनी पकड़ी, अभी जमीन में बोई भी नहीं है, खाद भी नहीं डाला, खाद भी नहीं डाली, पानी भी नहीं डाला, और उस टहनी ने उसके हाथ में ही फल देना शुरू कर दिए, तो कहा तस्दीक कर लिया कर, नेक बख्तों के साथ ऐसे हालात हो जाते हैं। कुछ नहीं भी करते तो वही फल पैदा होना। अब देखो हम जमीन पे मेहनत करते हैं, बाज दफा कितनी मेहनत करो दरख नहीं उगता, बाज दफा वहां से उगाता है जहां कोई मेहनत ही नहीं की होती, कुछ मेहनत ही नहीं की होती। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है भाई, जब देता है अल्लाह बगैर मेहनत के। और इमाम शाफी कहते हैं, और अगर तुमने ये सुना कि बदकिस्मत आदमी जिसके मुकद्दर में रोजी नहीं है, वो कुएं के पास आया, उसको प्यास लग रही थी, उसने कुएं को लबालब भरा हुआ देखा, खुश हो गया, भाई अब तो पानी ही पानी, अब तो जाऊंगा पानी पी के शराब हो जाऊंगा, ये गया और पानी उसे देख के नीचे चला गया। सब पी रहे पानी, नीचे नहीं आ रहा पानी, ये सब गया कि यार सब पी रहे इस कुएं से तो मुझे भी मिलेगा पानी, इसको देख के कहां चला गया, नहीं नीचे तुझे नहीं मिलेगा। तो इमाम शाफी कहते हैं, मान लिया कर ऐसे वाकयात दुनिया में होते हैं। ये तो एक मिसाल है, तशबीह है, बताने के लिए कि भाई रिस्क के खजाने किसके हाथ में है। तो ये शरीयत आपको सुस्त काहिल नहीं बना रही कि कमाना छोड़ दें, शरीयत कह रही है अपनी मेहनत करो, मिलेगा कितना, जितना अल्लाह ने मुकद्दर। तभी अजमिलू फी तलब फरमाए, एतदाल से कमाओ, एतदाल से कमाओ, नजर अल्लाह पे रखो, अल्लाह देगा तो आ जाएगा, नहीं देगा तो गुर्बत में इंजॉय करो। क्या करो गुर्बत में? انجوائے, اپنی غربت فخر سے بتایا کرو, پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت کے پاس ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا, اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی, عالم بن گئے, وہ شادی نہیں کر رہے تھے. حضرت نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے, اتنی عمر ہو گئی. تو حضرت ان کی نقل اتار کے بتایا کرتے تھے. انہوں نے ایسے دل سے کہا پیسے ہی نہیں ہے. حضرت نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے, پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا تھا کیونکہ حضرت کا تقوی کا معیار بہت اونچا تھا. حضرت کو یہ آیا اگر پیسے نہیں ہے تو ایسے کیوں بتا رہے پیسے, کوئی بہانہ کر دے بھائی ابھی مصروفیت ہے. حضرت کی رائے یہ تھی کہ جتنا بھی غریب ہو بتائے نہیں. ہمارے حضرت کے تقوی کا معیار تھوڑا لیٹس بزرگوں سے تھوڑا سا زیادہ تھا. ان کا یہ تھا بھوک سے مر بھی رہا ہو تو بولے پیٹ بھرا ہوا ہے. وہ کہتے تھے جس کی یہ سوچ ہے یہاں رہے ورنہ یہاں سے دفع ہو جائے, وہ میرے سے بیعت نہیں ہو سکتا, وہ نہ یہاں رہے گا خانقاہ میں. ان کے یہ تھا کہ مر رہے ہو بھوک سے, بالکل بھی پیسے نہیں ہے, جیب میں پتھر ڈال کے گھومو تاکہ لوگوں کو لگے اشرفیہ لے کے گھوم رہے. ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ مخلوق کے سامنے یہ کہنا ہی نہیں ہے پیسے نہیں, اور کہتے تھے سمجھنا بھی نہیں ہے کہ میں غریب ہوں, یہ بھی پابندی تھی حضرت کی طرف سے. یعنی غریب کہنے پر اپنی غربت دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا تو دور کی بات, سمجھنے پر پابندی کہ میں غریب ہوں, کہ میں بہت مالدار ہوں, یہ دماغ میں یہ ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے بھی کہ بہت دیا ہے تو نے. فرماتے تھے مقام صبر ہے ہی نہیں. صبر کہتے ہیں مصیبتوں میں, کہا صبر وبر نہیں ہے آج کل. صبر تو جب ہوتا ہے جب ٹینشن ہو, تو ٹینشن وینشن آج کل ہے نہیں, بنائی ہوئی ٹینشنیں بہت ہیں. حضرت فرماتے ہیں جن چیزوں کو لوگ ٹینشن سمجھتے ہیں, ٹینشن وینشن نہیں ہے, یہ بنائی ہوئی ہیں, یہ دنیا سے محبت ہے, گٹر ابل رہے ہیں دنیا کے تو اس لیے ٹینشن میں جاتے ہیں. دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو بھائی اگر 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بھی کچھ کھانے کو مل گیا تو بس بہت ہے. وہ حضرت کی رائے یہ تھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ انتہائی شدید غربت میں بھی کیا کہے اللہ کا دیا, اور یہ ہوائی باتیں نہیں تھی, حضرت نے خود اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تھا. تو ہمارے حضرت کا تو یہ مزاج تھا کہ تبھی حضرت کو ان پہ غصہ آیا جب انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. نیا آدمی ہوگا وہ کہے گا اس پہ غصے والی بات نہیں, بےچارے کے پاس نہیں ہے بھائی, کہاں سے شادی کرے گا, جب کوئی غریب آدمی کو دیتا کون ہے. مسئلہ یہ ہے نا, قرآن نے یہ تو کہا ہے نکاح کرو گے اللہ برکت دے گا, تو قرآن نے تو اس کو کہا ہے نا, قرآن نے تو مرد کو کہا ہے کہ نکاح کرو اللہ برکت دے گا, لیکن لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ تم غریب کو دے دو, ان کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بھائی. تو یہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو کر رہا تھا لیکن کوئی دے ہی نہیں رہا تھا, جو نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہاں تو کر لے گا تو پھر میں برکت دے دوں گا. تو پیسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا وہ کہتا یار ایک بےچارے کے پاس پیسے نہیں ہے, اور حضرت کہہ رہی ہے کتنا نالائق آدمی ہے کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے, تو وجہ اس کی یہ کہ وہ صحبت اٹھائی نہیں تو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. نارمل آدمی کے لیے وہ باتیں مشکل ہیں, لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت. حضرت مولوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا, غالباً ڈاکٹر عبد الحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, ان کے خلیفہ تھے, بہت ساری پریشانی اپنی لکھی کیسے حالات ہیں. تو مولوی تھانوی نے کسی پریشانی کا جواب نہیں دیا, کوئی تسلی کی بات نہیں لکھی, کہا افسوس کی بات ہے پورا خط ناشکریوں سے بھرا ہوا ہے. صحیح ہے, پورا خط ناشکری سے بھرا ہوا ہے, جیسے کوئی خوشی نہیں دیکھی, ایسی ڈانٹ لگائی ان کو. تبھی تو ڈاکٹر عبد الحی بنے, پھر وہ اللہ والے بنے, اتنے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو ان سے ہدایت دی ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو رگڑے لگتے ہیں تو دل بنتا ہے. ہم لوگ ہوس کے پجاری ہیں بھائی, ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, پراٹھوں سے ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اور جو رمضان میں ایک مہینہ تھوڑی سی ہماری ڈائٹنگ ہوئی تھی اس کی عید بقرعید پہ ایسی کی تیسی, اب دوبارہ جو 70 کلو کے تھے وہ 170 کے الحمدللہ ہو چکے. تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پریشانی ہے, یہ نہیں کام نمٹا, یہ ہو میں ٹینشن میں, میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے میرے بھائی, یہ ناشکری ہے, اس کا دنیا میں کوئی علاج. یہ ڈپریشن میں سب زیادہ فرعون تھا, سب کچھ تھا لیکن اس کو ٹینشن نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام کیوں آ گئے مجھے سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, شکر کی توفیق عطا فرمائے, غموں سے پریشانیوں سے اللہ ہمیں بچائے.
اگر جی دو بھائی ہیں, ایک آدمی دن رات محنت کر کے وہ اپنا نصیب سنوار رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, مکان بھی بنا رہا ہے, اچھا کھا رہا ہے, اور ایک سونے میں وقت گزار رہا ہے, تو اپنا نصیب بگاڑ رہا ہے, تو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ مقصد یہ کہ جو اپنے نصیب کو خود بگاڑ رہے ہیں تو پھر مقصد یہ کہ وہ کیسے, پھر آدمی یہ کہتے جو میرے نصیب میں وہ مجھے مل گیا, ایسے کیسے.
دیکھو نصیب میں جو ہوگا مل کے رہے گا, ये तो एक हकीकत है। बाकी ये कि क्या मेहनत से नसीब बदला जा सकता है, ये ऐसे ही सवाल है कि दुआओं से तकदीर बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती। तकदीर किसी चीज से नहीं बदलती, दुआ भी तकदीर का हिस्सा ही होती है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा होता है कि इसे एक परेशानी आएगी, ये दुआ मांगेगा और वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म में होता है कि ये दुआ मांगेगा कि नहीं मांगेगा। और किसी की तकदीर में लिखा होता है कि इसे परेशानी आएगी, दुआ नहीं मांगेगा और परेशानी दूर नहीं होगी। तो तकदीर तो अल्लाह के इल्म का नाम है, जो अल्लाह का इल्म है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बाकी ये जो पोस्टी लोग होते हैं कहते हैं कि जो मुकद्दर में होगा पैसा आ ही जाएगा, तो हमें मेहनत की क्या जरूरत है, तो इनको ये बताना चाहिए तेरे मुकद्दर में पैसा नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा कभी भी, तू ऐसे ही सड़ेगा ऐसे ही मरेगा। क्योंकि जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर, हमेशा नहीं, बगैर मेहनत के भी आ जाता है, लेकिन जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर उसके मुकद्दर में मेहनत भी लिखी हुई होती है कि मेहनत करेगा और पैसा आ जाएगा। अल्लाह को पता था ये मेहनत नहीं करेगा, बल्कि यही बातें करेगा कि नसीब में होगा तो आ जाएगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं आएगा। अल्लाह को पता था ये बातें करेगा, लिहाजा नसीब में अल्लाह ने लिखा ही नहीं होता। समझ रहे हो, हर काम नसीब से होता है, शादी भी नसीब से होती है। अब कोई कहे कि मैं रिश्ता ही नहीं भेजता, मैं शादी नहीं करता, नसीब में होगी तो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि नसीब में नहीं है, क्योंकि जिनके नसीब में अल्लाह ने लिखा होता है ना कंवारे रहेंगे, उनके नसीब में ये बातें भी लिखी हुई होती हैं कि बातें ही फेंकता रहेगा ये सारी जिंदगी बैठ के, ये मेहनत करेगा ही नहीं। अब हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है, इसलिए हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो पता चल जाता है मेहनत लिखी हुई थी। तो नसीब जो है ये पहले पता नहीं होता, पहले पता हो तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाए। इसकी मिसाल ऐसे है, मैं एक मिसाल देता हूं ना, जैद ने बकर को कत्ल किया, जैद ने कत्ल किया किसको, बकर को। बकर का बेटा आया, जैद को पकड़ा, बोला तूने मेरे बाप को कत्ल किया, मैं तुझे कत्ल करूंगा। जैद ने कहा तेरे बाप का मरना नसीब में लिखा था कि नहीं लिखा था, जाहिर लिखा हुआ था, हर आदमी की उम्र लिखी हुई है कि कितने, उससे एक इंच भी एक सेकंड भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो भाई तेरे बाप के मुकद्दर में जब इस टाइम पे मौत लिखी हुई थी तो मुझे क्यों मुजरिम ठहरा रहा है? तो उसके हम दो जवाब देंगे, एक इल्जामी और एक तहकीकी। तहकीकी जवाब तो ये है कि ये तो लिखा हुआ था कि इसने इस वक्त मरना है, लेकिन ये लिखा हुआ तुझे किसने बता दिया था, तुझे थोड़ी पता था कि ये इस वक्त इसने मरना है, तूने तो अपने इरादे से मारा है ना, वो तो अल्लाह का इल्म था, जो तुझे मालूम थोड़ी था। तुझे अगर पहले पता होता कि लिखा हुआ है फिर तू माजूर था, तू कह देता भाई मुझे पता था इसने इतने बज के इतने मिनट पे बकर ने मरना है, तो जो काम होना ही है मैंने कर दिया, क्या ख्याल है भाई, तुझे थोड़ी पता था। अगर उसको ये दलील समझ में ना आए तो जिस दलील से जैद ने बकर को कत्ल किया, बकर का बेटा उसी दलील से जैद को कत्ल कर दे, बोले ठीक है ठा, तेरे मुकद्दर में भी क्या था, लिखा हुआ था ना, तो मैंने कौन सा गलत किया, तू भी वही। तो लिखा हुआ तो एक हकीकत है जो टल नहीं सकती, लेकिन इस इल्म अल्लाह ने किसी मुकर्रब फरिश्ते को भी ये इल्म नहीं दिया, तकदीर का इल्म, ये इल्म अल्लाह के पास है, और इसी बेस पे इंसान की आजमाइश है, उसे पता नहीं होता कि क्या है, लिहाजा वो अपने इरादे से कर रहा होता है, वो तो अल्लाह के इल्म है कि ये अपने इरादे से ये काम करेगा, लेकिन हमें नहीं पता होता। समझते हो कि नहीं समझते? और ये जो हदीसों में आता है कि जो रिश्तेदारी जोड़ता है उसकी उम्र लंबी होती है, ये सही हदीस है, जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उम्र लंबी हो, वो रिश्तेदारी को जोड़े। इस पर एक इश्काल होता है कि उम्र तो मुतय्यन है, तो रिश्ता जोड़ने से उम्र लंबी कैसे हो जाती है? उसका वही जवाब है कि अल्लाह ने लिखा हुआ होता है पहले से कि इसकी उम्र इतनी थी, लेकिन चूंकि रिश्ते जोड़ेगा लिहाजा ये उम्र बढ़ा दूंगा मैं इसकी। तो जो असल तकदीर है ना उसमें ये पहले से लिखा होता है कि उम्र कम लेकर आया, लेकिन 50 साल में मरना था, लेकिन चूंकि रिश्ते जोड़ता था लिहाजा 80 में मरेगा जाके, ये समझते हो? तो वो जो असल तकदीर है ना जिसको तकदीर मुबरम कहा जाता है वो कभी चेंज नहीं होती, बल्कि रिश्ता जोड़ने का अमल ये भी उसी तकदीर का हिस्सा है कि ये रिश्तेदारी जोड़ेगा, अल्लाह के इल्म में होता है पहले से। तो अब हमें नहीं पता होता, लिहाजा आमतौर पर जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं उनकी उम्रें लंबी होती हैं। आप कह सकते हैं हमारे फलाने रिश्तेदार ने तो सारी जिंदगी रिश्ते जोड़ने में लगा दिए फिर भी इतनी जल्दी मर गया, तो उसमें उसकी बात यह है कि बहुत सारे काम वो जल्दी मरने वाले भी तो कर रहा होता है ना, تو جب بھی کسی چیز کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں نا تو سب چیزیں پلس مائنس ہو کے ریزلٹ سامنے آتا ہے. ایک حکیم نے کہا کہ یہ کھاؤ لبوب کبیر, حکیموں کی بڑی زبردست دوا ہے, کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. لبوب کبیر کھاؤ کے جسم میں طاقت آئے گی, یقیناً آئے گی طاقت, بڑی زبردست چیز ہے. لیکن آپ لبوب کبیر کے ساتھ اس میں چرس ملا کے کھا رہے ہو, آپ صبح ایک چمچ لبوب کبیر کا, شام کو ایک چمچ چرس کا, پھر کہہ رہے ہو کہ یار میرے میں تو طاقت آ نہیں رہی. تو بھائی آپ طاقت لانے کا ایک چمچ اور ختم کرنے کے دو چمچ کھا رہے ہو. تو ایسے ہی جو بھی عمل ہے اس سے عمریں بھی بڑھتی ہیں, رزق میں برکت بھی ہوتی ہے. لیکن ہم بہت سارے رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں عمر گھٹانے والی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پلس مائنس ہو کے ریزلٹ سامنے آتا ہے.
ایک سوال اور تھا اسباب پہ بھی,
اور ایک منٹ یہ بات مکمل کر. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی اگر جلدی مرا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے نا جلدی, ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی پہلے مرنا ہو, لیکن رشتے داری جوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی عمر اتنی کر دی ہو. بھائی مرنا 20 سال میں تھا, اللہ نے کہا رشتے جوڑتا ہے تو 30 میں مرے گا, تو آپ کو وہ جلدی لگ رہا ہے, حقیقت میں وہ دیر سے مرا ہوتا ہے. صحیح ہے نا.
یہ اسباب کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے, جیسے یہ ابھی ہو بھی رہا ہے, اسباب نکاح بھی ہو رہا ہے. وہ اسباب پہ یہ ہے کہ کسی مرید نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت دعا کر دیں بیٹا ہو جائے, انہوں نے دعا کر دی, پھر دوبارہ کبھی ملا 6 مہینے بعد بولا پھر دعا کر دیں بیٹا ہو جائے. وہ اس طرح اس نے 3 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا شادی ہوئی, کہنے کہ نہیں, تو کہنے کہاں سے ہو جائے گا. یہ اسباب والی بات.
جی جی اچھا یہ سوال ہے. آگے ابے لڑکی کے ابا ہی نہیں آئے, ان کو تو بہت ٹائم لگے گا. ہاں ہاں وکیل بن جاؤ. تو دلہن کے ابا نہیں آئے, ابا غائب ہیں, تو ابا کی غیر موجودگی میں تو نامناسب ہے نا. ہم شادی اتنی جلدی کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ابا ہی نہ ہو اور شادی کرا دیں. آنے دو جہاں اتنے, کتنی عمر ہو گئی, 25 سال صبر کیا, 2 گھنٹے اور صبر کر لے, کیا جا رہا ہے. اچھا بھائی جو لوگ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, میں اس وقت تھکا ہوا نہیں, بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں, بالکل دماغ. اور جب آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے نا پھر ملاقات کرتا ہے تو اس میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے, وہ بدخلاقی پہ بھی ابھرتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, بعد بہت تھکا ہوا تھا, کوئی بندہ آ کے چپک گیا تو میرے تھوڑا سا بدخلاقی ہوئی, پھر مجھے بعد میں ندامت ہوئی. تو جب بھی کسی سے ملیں یا تو ٹائم لے کے آئیں یا موڈ دیکھ کے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی نہیں, میں اثر کے بعد, جو جن کو ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہے ان سے اثر کے بعد ٹائم بھی, میں اس وقت تو کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا, میں اثر کے بعد ٹائم دیتا ہوں ہر ایک کو, نہیں جن کو ٹائم دیا ہوا ہے تو اثر کے بعد ملنے وہ, ٹھیک ہے, ابھی نہیں. کیونکہ رمضان میں نا سونے جاگنے کی روٹین اتنی آؤٹ ہوئی ہے کہ اب بالکل ہی سب چینج ہو گیا تھا نا, رمضان تو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد سے ابھی تک میں مینٹلی ڈسٹرب ہی چل رہا ہوں, صحیح نہیں ہوا میں. تو وہ بے وقت سونا بے وقت جاگنا والا سیٹ اپ چل رہا ہے اور اتنا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. بہت مشکل سے آج بیان کیا ہے میں نے, بہت مشکل سے. تو اس لیے کائنڈلی مجھ سے نہ ملیں, بڑی نوازش ہوگی, انسان ہوں میں. ایک تنظیم والے علماء, یہ جو بڑی بڑی بین الاقوامی پالیسیاں ہوتی ہیں یہاں بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوتی اس پہ, سمجھ رہے ہو. یہاں بیٹھ کے مجھ سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کیسے فتح ہوگا, میں یہاں بیٹھ کے ان کو بتاؤں گا اسرائیل کیسے فتح. پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اور ایٹم بم کب بنا رہے ہیں. مفتی محمد صاحب, مفتی صاحب ہمارے ہماری جماعت ہے اندرون ملک سال کی, نواب شاہ سے ملاقات کے لیے سلسلے میں آئے, ملاقات کے لیے میں نے بتا دیا. آپ میری کھوپڑی دیکھ رہے ہیں, بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی سے ملوں میں. نارتھ کراچی میں عید کے دن ایک گھر میں قادیانیوں نے خفیہ طور پر جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے تھے. قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے, اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت سے غیرت لیس لوگ ہیں, اور ایک قادیانیوں میں کوئی لگتا ہے کہ دونوں کے نہ کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نکال, مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کتابیں نکالو, اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس لیے کیا کچھ لکھے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں. اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے، بکواسات کیے ہیں اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی تم مرزا کی، جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا۔ نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں، ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو۔ لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے۔ وہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے۔ انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں۔ آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے۔ میں نے جو بھی ارشاد بٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کے اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا۔ تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں۔ آپ کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو بیسیوں اور اتنے کام ہیں نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو، ٹھیکہ لیا ہوا ہو، تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، آگے اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی۔ ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، دو غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ، یار تو جب پڑھتا ہے کم بخت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے، تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد، آج کیا کہہ رہا ہے کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں اس الگ بات کر رہا ہے، ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی، اتنے تضاد ہیں۔ تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی۔ لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا کے۔ کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے۔ ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا، میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا، اس کے جو اسٹوڈینٹس ہیں نا ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی، یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے، یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا، تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر، کمزور ہے۔ تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر، اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے، اب ذلیل ہو گیا، لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے۔ تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا، میرے علاقے میں آ کے لڑ، میرے علاقے میں آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاقے میں آ کے مارا اس کو، کوٹا نا پبلک کے سامنے۔ اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا، خالی ہاتھ آ، تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے، تجھے ضروری ہے بلا بلا کے پٹوانا، بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے تو لڑائی نہ کر۔ تو یہ جو بےچارہ انجینئر علی مرزا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا، آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے، میں وہاں چلا گیا، بھاگ گیا۔ پھر اس نے چیلنج کیا، ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، میں نے چیلنج قبول کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے، اس نے کہا نہیں رفع الیدین پر نہیں، وہ تو اختلافی مسائل ہیں، تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الیدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چیلنج کی ہیں، وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الیدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس، بولو، کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہو. جو پہلے سے ذلیل ہو نا ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الیدین، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ، یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی. یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈینٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں بات ہوگی المحند المفنت پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بات ہوگی المحند المفنت پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں. اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج، پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا، سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں، اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، حوالوں میں غلطی، عربی ترجمے میں غلطی، فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں، ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے. ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا اسی کی کتابوں سے، ان کو ذلت محسوس، بولو، نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا، اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ، تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے، انسان تھے، بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا، باقی ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں، یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا، وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے، بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی، ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے. وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں، وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں، وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینز ہیں، فالوورز ہیں، وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا، اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات کہہ رہے، اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا، لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس، بولو، ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا، ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا اس کو، کتنا ذلیل کیا ہے ہر بات میں، وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے، جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے، دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے یار. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو، ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتی. چرسیوں ہیروئنچیوں کی ذلت محسوس نہیں ہوتی، جتنا بھی مارو. جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینز نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں، اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں، لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے، کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے، تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو کہہ دینا ہے، آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ، میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں، لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی، دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. میں ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں، اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں؟ تو اس کی، یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہو گے کچھ، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم جہلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. तो जाके उसके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। अच्छा, इंजीनियर क्या करता है? कैसर राजा साहब बड़े न्यूट्रल आदमी है, कोई मौलवी नहीं है। कैसर राजा ने इसके साथ पॉडकास्ट किया, तो जब भी कोई न्यूट्रल आदमी इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, इसकी बेचारे को ऐसी की तैसी कर देता है। लिहाजा ये पॉडकास्ट करवाता भी है अपने स्टूडेंट से। अब तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कह दिया हमें स्टूडेंट है नहीं, हमें क्यों मिलावा जब अपने खाते में डाल रहे हैं। तो जो न्यूट्रल आदमी जब इसके साथ पॉडकास्ट करता है ना, वो इससे सवाल पूछता है, फिर पता चलता है भाई कितने पानी में। तो कैसर राजा ने इसको जलील किया अच्छे खासा तबीयत से, कोई जवाब है नहीं तो इल्जाम डाल दिया कैसर राजा के ताल्लुकात हैं दीनी मदरसों से। भाई तू यार कुछ भी फेंकता है, कुछ भी फेंकता रहे बैठ के। बिलफर्ज अगर ताल्लुकात है भी तो इसका आपके उन सवाल से क्या ताल्लुक है? जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दो ना, जिससे भी ताल्लुक हो। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। तो ये हाँ, असल जो मैंने पर्ची बात रिकॉर्ड करवानी थी वो ये कि कादियानी यहां ईद की नमाज पढ़ते थे। अल्लाह मौलाना उमर साहब बाबुल इस्लाम वाले, उनको भी जजाए खैर दे, उन्होंने भी एक्शन लिया, थाने में रिकॉर्ड जो रिपोर्ट की उन्होंने, और हमारे सर सैयद थाने को भी सलाम है इनके। बहुत इसलिए नहीं कि हमारा थाना है, लेकिन इन्होंने बहुत डाकू मारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकुओं का मुकाबला करते हुए इन्हें। ये जो सर सैयद थाना है ना, हमारे इलाके का थाना, यहाँ के SHO बड़ा खानदानी है, पहले वाले जो SHO वो भी, और यहाँ वाले SHO भी जो अभी आए हैं नए फरूख भाई, वो भी खानदानी आदमी है। और यहाँ जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने अब क्या किया, जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो कादियानियों का वो जो ईदगाह जहां हो रही थी, उनकी तबलीग भी हो रही थी, उसको सील कर दिया इन्होंने। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है भाई, बहुत सारे काम कानूनी तरीके से शराफत से हो सकते हैं, हम खुद ही नहीं कर रहे होते। और जब इस तरह कादियानी नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, पुलिस को बुरा भला कहते हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट को बुरा, जो चीजें उनकी बुरी हैं वो आप उनको एतराज करो, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन बहुत से कामों में हम बुरे होते हैं, हम खुद कोई कानूनी तरीके से तमीज से काम नहीं कर रहे होते। अब मारधार वाला तरीका ठीक नहीं है। अब कादियानी ईद की नमाज पढ़ रहे थे, लोग डंडे लेके पहुंचते मारते, इससे क्या होता? दुनिया के सामने बुरा इमेज जाता है यार, ये दहशतगर्दों का मुल्क है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो कोई मारधाड़ वाला तरीका इख्तियार ना करें, कानून आपके हाथ सपोर्ट करता है। अगर कहीं कादियानी छुप के तबलीग कर रहे हैं, इलाके के थाने में आप कंप्लेन करें, अगर वो थाना एक्शन नहीं लेता तो आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाएं, उसका बाप भी एक्शन इंशाल्लाह लेगा। तो यहां मौलाना उमर साहब और दीगर कुछ उलमा को पता चला, उन्होंने जाके एक्शन लिया, हमारे थाने में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका जो इबादतगाह थी, इबादत खाना था, वो बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तकलीफ तो हुई होगी मिर्जा जहलमी को ठीक ठाक, वो पता नहीं क्या मसला है, लिबरल लोग उससे बहुत कुछ, जो मुलहिद लोग हैं ना वो बहुत फेवर करते हैं उसको। मैं जब जहलम से होके आया, सारी दुनिया फतह की मुबारकबाद दे रही थी, एक बहुत मशहूर मुलहिद है, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो मेरे बारे में कहता था मुफ्ती तारिक मसूद कभी जहलम नहीं जाएगा। मैं कहता था यार ये है तो एथियस्ट, ये मुलहिद है, इसके लिए तो मैं और इंजीनियर दोनों बराबर है ना, क्या ख्याल है? इसके लिए इसके हक में तो दोनों बराबर हैं, तो ये उसको फेवर क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा? अच्छा मैं होके आ गया तो भी उसके फेवर में क्लिप रिकॉर्ड करवाया कि उसकी पॉलिसी नहीं है किसी से मिलना। तो मुझे लगा कि लगता है कोई आपस में कनेक्शन, बोलो मिलते हैं। दोनों ही इस्लाम का बेड़ा गरक कर रहे हैं, एक बता के बेड़ा गरक कर रहा है और एक इस्लाम का लेबल लगा के बेड़ा गरक कर रहा है कि तमाम मुज्तहिदीन अकाबिर बुजुर्गान दीन से एतमाद खत्म कर दो। जब एतमाद खत्म हो जाएगा कि लोग बेलगाम ऊंट की तरह हो जाएंगे, जैसे ऊंट बेलगाम होता है ना, उसकी कोई रुख मुतय्यन नहीं होता, तो ऐसे ही बेलगाम हो जाएंगे लोग। तो दोनों माशाल्लाह इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक बता के काम कर रहे हैं जो मुलहिद है, और एक बताता ही है कि इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, काम इस्लाम का बेड़ा गरक करने वाला कर रहा है। इधर सवाल क्यों भाई, हम कहाँ हैं? दुल्हन के अब्बा कहाँ हैं? नॉर्थ कराची में एक दिन, तो ये पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड करवाया कि जब पुलिस अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हम अपने सर सैयद थाने की पुलिस को और जो भी उलमा मौलाना उमर साहब समेत जिन्होंने कानूनी तरीका इस्तेमाल, अगर ये डंडे वाला तरीका इस्तेमाल करते मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता, समझ रहे हो? जाके मार धाड़ छियों ये नहीं होता, ये हम मुल्क में चलने नहीं देंगे, ये तरीका नहीं चलने देंगे हम मुल्क में। और जज्बाती तकरीरें उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, जो ऐसी बातें किया करें उड़ा दो, बोले तू खुद उड़ा दे, खुद उड़ा दे जाके। ملاقات کرنی ہے سوا سے آئے ماشاءاللہ مجھے بھی مجھے ابھی بستر سے ملاقات کرنی ہے میں جاؤں گا جلدی ادھر ہی مسافہ کرا دو جلدی سے حضرت جی ہم دو طالب علم ہیں ہم شہر اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں اجازت حدیث بڑے علماء سے لیا کرو مفتی محمد صاحب ہیں جامع ترشید میں شیخ الحدیث ہے اسی طرح سب سے بڑی خاندانی اجازت حدیث تو حضرت مفتی تقی سوانی صاحب دیتے ہیں دارالمکرنگی میں وہاں چلے جاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ وہ افغانستان میں شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ یہاں کے وسائل لوٹنے آیا تھا اور اپنا مقدر پورا کر کے چلا گیا ہے اور کہتے ہیں امریکہ یہ بات تو غلط ہے اچھا آگے کہہ رہے ہیں امریکہ طالبان کو ہر مہینے ڈالر دیتا ہے اب طالبان نے بگرام ایئر بیس ہی ان کے حوالے کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا بگرام ایئر بیس حوالے کیا کہ نہیں کیا یہ بات ہے امریکہ شکست کھا کے گیا لیکن امریکہ بہت ہوشیار ہے امریکہ ہے بہت ہوشیار شکست کھانے کے بعد بھی وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے اب وہ ان کو پیسے دے رہا ہے دبا کے اور کیوں دے رہا ہے یہ پھر اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ہمیں مروانے کے لیے اب دے رہا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں نیمبو چٹائے ہیں نا تو کچھ اب ہم بھی ان کو بھی چترول لگائیں گے تو اب وہ الٹا گیم اب گیم کیا ہو گیا ہے اڑ گیا اس لیے افغانستان اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی ٹینشن بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے تو بس اس میں مزید کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا احسان فراموشی ہے مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت میں سے 25-10 نکاح کے حوالے سے کچھ پریشانی آ رہی ہے نکاح کے حوالے سے تو پریشانیاں ہی آتی ہیں میرے بھائی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آ رہی ہیں آنے دو پریشانیاں پھر کبھی ملیں گے تو انشاءاللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے مجھے جلدی جانا ہے آ گئے دلہن کے وکیل بس میں یہ دو تین پرچے حل کر دوں میرا نام عبداللہ داؤد سوال قرآن میں ہمیں مسلمان کہا گیا تو خود کو دیوبندی بریلوی ہے اہل حدیث کہنا کیا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ کس نے کہلوایا ہے پہلے یہ سمجھ لو فرقہ یہ فرقے بنائے کس نے ہندوستان میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام غلط تھا یا ٹھیک تھا بولو وہ ٹھیک وہی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے الگ نام رکھا وہ غلط ہے علماء دیوبند نے کوئی الگ دین کی بنیاد نہیں رکھی جو اسلام دنیا میں جب آیا بر صغیر میں انڈیا پاکستان افغانستان پورے علاقے میں صحابہ تابعین لے کر آئے ہم آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں وہ 20 رکعت تراوی لے کر آئے وہ عبداللہ بن مسعود کا فقہ لے کر آئے تھے لہذا اس میں رفع الیدین عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے نا تو وہ سارا اسلام چلتا چلتا آیا پھر کیا ہوا کچھ لوگ اہل حدیث بنے وہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا اہل حدیث کا تبھی اہل حدیثوں کے پیج پہ اپنی پہلی مسجد کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے خود اہل حدیثوں کے پیج پہ کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد آپ علماء دیوبند کی کوئی پہلی مسجد بولو نہیں دکھا سکتے پھر احمد رضا خان بریلوی آئے انہوں نے بہت سارے مسئلوں میں علماء سے اس وقت کے ہندوستان کے علماء سے اس وقت یہ دیوبندی بریلوی لفظ مشہور نہیں تھا ان میں بہت سارے مسائل سے انہوں نے اختلاف کیا بہت سارے مسائل میں اور جو بھی پھر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں اب ہوا یہ کہ پبلک نے فرق کرنے کے لیے کہ جو بریلوی نہیں تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا کیونکہ جو دیوبند کا مدرسہ تھا ان کے عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلے آ رہے تھے ان سے انحراف کیا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نبی کو عالم الغیب کہنا مختار کل کہنا یہ سب چیزیں انہوں نے کی تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا اور جو ان عقیدوں کے حامل نہیں تھے ان کو دیوبندی کہا چاہے وہ دیوبند سے نہ بھی ہوں اب مولانا ابو الحسن علی ندوی تو ندوۃ العلماء کے تھے وہ دیوبند کے تھوڑی تھے لیکن ان کو بھی کہا کیا جاتا ہے دیوبندی یہ دیوبندی دیوبندی نہیں یہ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے نام دیا اور پھر اہل حدیث جو تھے وہ بہت بعد میں ہیں وہ تو بہت ہی بعد میں آئے ہیں ان کی تو پہلی مسجد ان کے آفیشیل پیج سے شائع ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد اس سے پہلے کس کی مسجدیں تھیں ساری ہماری مسجدیں تھیں نام دیوبندی نہیں تھا کیونکہ یہ دیوبندی بریلوی فرقے نہیں بنے تھے تو یہ فرقہ جو بنا ہے بریلوی بنا ہے اس سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبندی کہنا شروع کر دیا تبھی ہمارا سلسلہ نسب نبی تک پہنچتا ہے حالانکہ سارے دیوبندی تھوڑی تھے یعنی دیوبند سے تھوڑی منسوب تھے تو جو صدیوں پہلے اسلام آیا تھا ہم اب تک اسی کو فالو کر رہے ہیں وہ فقہ حنفی ہی آیا تھا ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں تو ہمارے علاوہ جو ہیں وہ نئے نئے نکلے ہم میں سے ہم اسی پر ہیں جو صدیوں سے اسلام चला आ रहा है, समझते हो कि नहीं समझते, जो सदियों से चला आ रहा है बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया, वो सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं, अफगानिस्तान में भी, उज़्बेकिस्तान में भी, ताजिकिस्तान में भी, बुखारा में भी, इमाम बुखारी का वतन बुखारा उसमें भी मेजोरिटी हनफियों की है, इमाम बुखारी के अपने वतन में भी जो इस्लाम आया वो तो इमाम बुखारी से पहले आया ना, तो वो क्या था, वो भी फिका हनफी था। तो हम तो भाई उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जो सदियों से आया। अहले हदीस कहते हैं जब फिका हनफी नहीं था तो कौन सा इस्लाम आया, हम वो वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जब फिका हनफी नहीं था तो जो इस्लाम था। भाई जब फिका हनफी नहीं था तो भी यही इस्लाम था जो हम फॉलो कर रहे हैं, मुरतब नहीं था, जब मुरतब हो गया, रिटर्न फॉर्म में आ गया, तो जो मुरतब अबू हनीफा के शागिर्दों ने किया उसको फिका हनफी कहा जाने लगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं बुखारी की हदीस नहीं मानता, उस हदीस को मानता हूं जो बुखारी से पहले थी। भाई हदीस वही थी जो इमाम बुखारी की है, नाम बुखारी का इसलिए दिया कि उसका मुरतब किसने किया, उसको इमाम बुखारी ने। तो यह हनफी शाफी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ मंसूब है, लेकिन तरतीब किसी और ने दिया है इनको, बाद वाले लोगों ने, इसलिए इनकी निस्बत उनकी तरफ कर दी है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं मुसहफ उस्मानी को नहीं मानता क्योंकि हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया है, मैं उस कुरान को मानता हूं जो उस्मान से पहले था, तो बेवकूफ होगा ना एक नंबर का। और भाई जो हजरत उस्मान से पहले था उसी को मुरतब हजरत उस्मान ने करवाया, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी है, हजरत उस्मान की तरफ निस्बत कर दी। तो भाई हम तो वही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, सहाबा ताबीन से चल के पूरी दुनिया में फैला, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिकही लिहाज से फर्क था, वो फिकही इख्तलाफ तो सहाबा में भी था। तो बाद में जितने लोग आए हैं नए नए नामों से, ये नए हैं। तो हमें जो देवबंदी कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि हम उलमा देवबंद के बाद वजूद में आए हैं, ना 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 ना, बरेलवी फिरका बाद में वजूद में आया है तो उनसे फर्क करने के लिए क्या कह दिया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमें सुन्नी कहा जाता है, तो साहबा तो शिया सुन्नी नहीं थे, साहबा में थे कोई शिया सुन्नी, हम ये कहेंगे साहबा सारे सुन्नी ही थे, ठीक है ना, नाम सुन्नी नहीं था उनका क्योंकि शिया मजहब नहीं था, शिया मजहब बाद में आया है तो उनसे फर्क करने के लिए जो शिया नहीं थे उनको क्या कहा जाने लगा, सुन्नी। अब कोई के सुन्नी बाद का फिरका है, मैं नहीं मानता, साहबा के दौर में तो ना शिया थे ना सुन्नी थे। हम कहेंगे भाई सुन्नियों के जो अकीदे हैं वो वही हैं जो सहाबा ताबईन के थे, लेकिन इनको नाम सुन्नी नहीं दिया गया था क्योंकि जरूरत नहीं थी नाम देने की। तो जब शिया फिरका वजूद में आया तो फिर इनको सुन्नी कहा जाने लगा शियों से फर्क करने के लिए। तो ऐसे मेरे भाई उलमा देवबंद सदियों से सहाबा ताबईन तबा ताबईन से जो जमात चली आ रही है इस्लाम लेके आई है वही उलमा देवबंद है, कोई नई चीज नहीं है। इनको देवबंदी कहा नहीं जाता था क्योंकि बरेलवी फिरका ही नहीं था, तो फर्क करने के लिए कहने की जरूरत थी नहीं। समझते हो कि नहीं समझते। तो ये जितने भी हमें कहते हैं ना ये देवबंदी फिरका और फलाना फिरका, आप इनकी तह में जाओगे ये सब बाद की पैदावार हैं, ये सब बाद में पैदा हुए हैं, हम ही हैं जो ओरिजिनल पे, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में इस्लाम आया था, सहाबा ताबईन तबा ताबईन इस्लाम लेकर आए थे, हमारे बाप दादे शुरू से सीना बसीना तवातुर के साथ उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ उसमें कुछ गलत चीजें ऐड होती रही हैं, मैं नहीं कह रहा वो सारे दूध के धुले में, जो गलत चीजें ऐड होती रही हैं तो उनको नए फिरकों ने नहीं निकाला, वो इन्हीं के अंदर उलमा ने निकाला है, उनको गलत चीजें भी ऐड हुई हैं उसमें, तो वो उलमा ही निकालते हैं उसको। कुछ उलमा उन गलतियों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, अहले हक उनको निकालना शुरू कर देते हैं, तो निकालते भी उलमा ही है उनको। तो ये जो नई नई चीजें मार्केट में आ रही है ये तो सिवाय इसके कि उम्मत को तोड़ने के अलावा कोई काम इन्होंने किया नहीं है। अभी मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब गए थे ना जी टीवी में, बड़ा झगड़ा हो गया कारी खलील साहब के साथ और लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए हुए थे। तो मैंने भी मुफ्ती रशीद अहमद साहब को फोन किया, मैंने कहा भाई ये तो टीवी पे बड़ी बहस हो रही है। तो कहने लगे मुझे उलमा मना कर रहे हैं ये इख्तलाफी मसाइल टीवी पे मत छेड़ो। मैंने कहा ये बहुत गलत कर रहे हैं जो उलमा कह रहे हैं आप, या तो सिरे से कोई भी ना छेड़े, कोई भी ना छेड़े, अगर सामने वाला छेड़ रहा है आप चुप नहीं बैठो फिर। इख्तलाफ का जिम्मेदार वो होता है जो पहल करता है इख्तलाफ में, दिफा करने वाले की तरफ इख्तलाफ की निस्बत नहीं की जाती। उम्मत रफुल यदैन के मसाइल निमटा चुकी थी, किसी ने इमाम शाफी को फॉलो किया, किसी ने इमाम अबू हनीफा को फॉलो किया, दोनों तरफ दलाइल, इमाम तिर्मिजी ने लिखा है ना, ऐसे ही थोड़ी लिखा कि बहुत सारे सहाबा रफुल यदैन नहीं करते थे, इस पर बड़ी बहसें हो चुकी। अब उम्मत ने किसी ने इख्तियार कर लिया रफुल देन करने वाले को, किसी ने कर लिया नहीं करने वाले, खत्म हो गई थी ये बहस उम्मत में, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है, जो कर रहा है वो भी ठीक। मैंने शाफियों के महल्ले में आंख खोली है, बहुत तवील टाइम मेरा शाफियों के साथ गुजरा है, वो हमारे साथ जोर से आमीन भी कहते थे, रफुल देन भी करते थे, हमने कभी जिंदगी में उनको नहीं छेड़ा, ना उन्होंने कभी हमें जिंदगी में छेड़ा। मैंने जब देखा शाफी लोग रफुल देन करते हैं, मैंने अपने वालिद साहब के पास आया, मेरे वालिद ने उलमा की सोबत में टाइम गुजारा है, बहुत बड़े बड़े उलमा, तो मैंने वालिद साहब से पूछा अबू ये यूं क्यों करते हैं। उन्होंने कहा बेटा इमाम शाफी भी बरहक हैं, वो उनकी राय को ये लोग फॉलो करते हैं, उनकी तहकीक ये है। लेते तो हम सब नबी की राय हैं, लेकिन नबी की राय को समझने में, नबी के अमल को समझने में इख्तलाफ होगा तो फिर उसमें बात होती है, तो बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा बेटा ये भी ठीक है, खत्म, जोर से आमीन भी ठीक है, आयिस्ता भी ठीक है, खत्म किस्सा। उसके बाद से हमारा कभी किसी शाफी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब मैं किसी शाफी को जाके छेड़ता कि तू रफुल दैन करता है, हमारी राय ये कि आखिरी वक्त रफुल दैन ना करने का है, या शाफी हमें छेड़ता कि बुखारी की हदीस है रफुल दैन करो क्यों नहीं कर रहे, तो इख्तलाफ की बुनियाद फिर वो रखते ना, वो तो कभी नहीं रखी किसी शाफी को, नहीं हमने देखा बहस करते हुए बिला वजह। मसला क्या है? मसला अहले हदीसों के साथ है, सबके साथ नहीं। मैं अलल इतलाक किसी अहले हदीस को बुरा नहीं कहता, बहुत सारे मोतदिल भी मैंने देखे हैं इनमें, लेकिन ये बर्रे सगीर में इख्तलाफी मसाइल की बुनियाद डाली किसने है इस पे बहस करने की? क्या ये हनफियों ने डाली है? ये डाली अहले हदीसों ने, इन्होंने और बड़ी शिद्दत के साथ चैलेंज कर करके कि ये अंधे मुकल्लिद हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। फिर हम अगर जवाब देंगे तो लोग कहते हैं देखो उम्मत कहां जा रही है, गजा में क्या हो रहा है, और ये रफुल दैन पे झगड़े कर रहे हैं, ये तीन तलाक पे झगड़े कर रहे हैं। भाई झगड़ा हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं उसको। झगड़ा वो कर रहा है कि उम्मत जब एक चीज पे मुत्तफिक हो चुकी थी, आपने लाके एक शुर्री क्यों छोड़ दी उम्मत में, कोई और काम करते आप? इसलिए टीवी पे अगर कोई बैठ के हमारे सामने इख्तलाफी मसाइल छेड़ेगा, हम उसको तबीयत से जवाब देंगे। ये ना समझे कि हम खामोश रहेंगे उसके सामने, उस वक्त जवाब ना दिया अगले दिन दे देंगे। हर वक्त इंसान के दिमाग में दलाई मुस्ताजर नहीं होते, लेकिन फिर उस लड़ाई की निस्बत उसकी तरफ होगी जिसने ये छुर्री छोड़ी है। मैं क्यों कारी खलील के खिलाफ बोला हूं? मैं पहले कभी बोला मैंने उनके खिलाफ? हमारा मसाइल में इख्तलाफ है। जब मैंने उनके क्लिप देखे कि आप अपनी राय भी देते हो, राय भी गलत होती है, और दूसरे पे थोपते भी हो, और दूसरे को बुरा भला भी कहते हो, जबकि आपकी राय में जान नहीं है, इतना तकब्बुर ये नहीं चलेगा भाई। ये अपनी जहालत आप दूसरों को क्यों दिखा रहे? कारी खलील साहब दलील दे रहे हैं कि हनफी लोग कहते हैं औरतें सिमट के नमाज पढ़े, और ये अंधी तकलीद में ऐसा करते हैं, और कसम उठा के कह रहे हैं कि अबू हनीफा की तकलीद में कहते हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़े। तो एक तो मसला गलत बयान कर रहे हो, और ऊपर से तकब्बुर इतना कि हनफियों को गलत नहीं कह रहे आप, अबू हनीफा को गलत कह रहे हो, इमाम शाफी को गलत कह रहे हो, इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं उनको गलत कह रहे हो, इमाम मालिक तबा ताबईन में जिन पूरी उम्मत जमा है उनके ऊपर तकवे पर इल्म पर, उनको गलत कह रहे हो, लेबल हनफियों का लगा रहे हो आप। तो खारी साहब हम इतने सीधे नहीं है जितना आपने हमें समझ लिया है। और बार बार मैं कहता हूं, ये मसला बयान करता हूं, बार बार कहते हो कि जी मुफ्ती साहब इस पे कोई हदीस दिखाओ कि औरत मर्दों की तरह नमाज पढ़े। फिर जब हम कहते हैं कि आप भी हदीस दिखा दो कि औरत मर्दों की तरह सफा मरवा में दौड़ेगी नहीं, चलेगी, इस पे कोई हदीस दिखाओ। कोई है हदीस? कोई हदीस नहीं। क्यों कहते हो औरत चलेगी दौड़ेगी नहीं? उम्मत का तवातुर। औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, जोर से नहीं कहेगी, क्या दलील है? उम्मत का तवातुर। हालांकि जिस हदीस में यह है कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी, ऐसी ही हदीस में यह है ऐसे हज करो जैसे मैंने किया। तो नबी तो दौड़े हैं, नबी ने तो रमल किया है पहले तीन चक्रों में, आप औरत को रमल क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे रमल? इसलिए कि भाई किसी हदीस में रमल से मना नहीं किया, लेकिन उम्मत का तवातुर क्या है बगैर रमल के? तो उम्मत का तवातुर एक बहुत बड़ी दलील है। तो जब तवातुर अमली से औरत का दौड़ने के बजाय चलना साबित हो सकता है, तवातुर अमली से जोर से के बजाय आहिस्ता लब्बैक कहना साबित हो सकता है, और तवातुर अमली से रमल ना करना साबित हो सकता है, तो तवातुर अमली ही से औरत का सिमट के नमाज भी साबित है। अब इसकी आप हमसे दलील पूछो कि तवातुर अमली में औरत का सिमट के नमाज पढ़ना कहाँ है, ये हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम कहेंगे अबू हनीफा की राय भी है, इमाम शाफी की भी, इमाम अहमद की भी, इमाम मालिक की भी, और इमाम बुखारी ने सिर्फ एक ताबईया का कौल नकल किया है कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी। इसका मतलब बाकी सब किस तरह पढ़ती थी? औरतों की तरह पढ़ती थी। उस जमाने में इतना मशहूर था ताबईन के दौर में। तो तवातुर अमली से साबित है। अगर इस तवातुर अमली को आप साइड पे लगा दोगे तो बीसियों मसाइल नमाज के चेंज हो जाएंगे। तो इतना गलत मसला बयान कर रहे हो और अगर करना था तो अरब उलमा की तरह बयान, अरब कैसे बयान करते हैं, कहते हमारी ये राय है बस खत्म चुप, ये अपनी राय भी थोपते हैं और जब तक हनफियों को रगड़े ना लगाएं और जलील ना करें इनको चैन नहीं आता, तो फिर मेरा लहजा तो ऐसा होगा ना, फिर लोग कहेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब देखो कारी खलील के खिलाफ कैसे चीख रहे हैं, ये आदाब है इस्लाम ने ये आदाब सिखाए हैं, तो पहले कौन चीखा है, पहले आप चीखे हैं और चीखे भी ऐसे आपको शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे पे तंज भी कर रहे हैं, तो वो एक ही वो, फिर मैंने मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद से कहा कि अब कारी साहब अगर टीवी के प्रोग्राम में ये हदीस पढ़े ना कि नबी के दौर में इकट्ठी तीन तलाकें एक समझी जाती थी, वहीं पकड़ना है कि हजरत ये इकट्ठी का लफ्ज दिखाओ, आप तर्जमा गलत क्यों कर रहे हो, ये अंधी तकलीद में है कि नहीं है, बार बार एक चीज बताई जा रही है, यार हदीस का तर्जमा तो सही करो भाई, तर्जमा ढटाई के साथ आप गलत कर रहे हो और बने हुए हो मुश्तहिद, आप जो तर्जमा सही ना करे हम उसको फॉलो करेंगे, अबू हनीफा को छोड़ के हमारा दिमाग खराब है क्या, पागल हैं क्या हम, तो फिर कवारियत की बुनियाद उलमा देवबंद ने नहीं रखी है, इन सब लोगों ने रखी है जो नए नए बाद में आए हैं, जिनकी पहली मस्जिद इन पेज पे छाया हुई है कि अहले हदीसों की हिंदुस्तान में पहली मस्जिद, इससे पहले मुसलमानों की मस्जिदें हुआ करती थी जो हम थे, समझ में आ रही है बात, फिर भी मैं सब अहले हदीसों को एक लाठी से नहीं हांकता, ये मेरा ज़र्फ है कि हमारा मसलक इख्तलाफ हो के भी हम इनमें बहुत सो को मोतदिल समझते हैं, अहले समझते हैं, जिनमें मौलाना हिशाम इलाही साहब हैं जो लाहौर वाले मोतदिल आदमी है, उन्होंने भैंस पे एक मसला रिकॉर्ड करवाया कि भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है, हालांकि ये भी इजमाए उम्मत से साबित है भैंस की, लेकिन चलो यार उन्होंने कहा हमारी राय है, अगर कोई इसे इख्तलाफ करता है तो हमें कोई एतराज नहीं, ऐसे भी हैं लेकिन मार्केट में ऐसे अहले हदीस क्या है, शॉर्ट है, मोतदिल भी है इनमें बहुत कम है, उधर वजीराबाद में थे एक अहले हदीस आलिम बड़े मोतदिल थे, वहां लोगों ने बताया हम मस्जिद के इमाम हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं टोका उन्होंने रफुलदैन करते हो नहीं करते, बल्कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि हजरत जो रफुलदैन नहीं करते उनकी नमाज होती है, उन्होंने कहा यार इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सदियों से बगैर रफुलदैन के नमाज पढ़ते आ रहे हैं, उनकी नमाजों को मैं गलत नहीं कह सकता, ठीक है हमारी तहकीक है रफुलदैन करना चाहिए लेकिन मैं उनको गलत, तो ऐसे भी अहले हदीस हैं लेकिन मार्केट में क्या है, शॉर्ट है, लेकिन बहरहाल ये फिरकों की बुनियादें इन्हीं मुतशद्दिद लोगों ने डाली हैं जो मुतशद्दिद अहले हदीस हैं, हाँ इनमें कुछ देवबंदी भी मुतशद्दिद हैं, मैं इनको भी दूध का धुलावा नहीं समझता, कुछ ऐसे देवबंदी मार्केट में हैं जिन्होंने हर गलत को सही करार देने का ठेका लिया हुआ है, और अहले हदीस की अगर कोई बात दो और दो चार की तरह भी सही होना साबित हो जाए फिर भी सिर्फ इस बेस पे कि उनके किसी बुजुर्ग ने लिखा होता है कि ये नहीं है, ऐसे भी देवबंदी हैं, हमारे देवबंदियों में भी हैं ऐसे लोग जो ये करते हैं ये काम कि एक बात का दो और दो चार की तरह साबित हो गया गलत है, भाई अगर अहले हदीस ने कह दिया तो अब इसलिए थोड़ी कि अहले हदीस अगर कह देगा तो सही बात ही कहेगा तो गलत ही कहना है, ऐसा थोड़ी होता है, तो मैंने फेवर कर दिया किसी मसले में अहले हदीस को तो मेरी शामत आ गई, अबे ये तो गैर मुकल्लिद हो गया, अबे तो ये हो गया, अबे ये तो ये हो गया, तो ऐसे हमारे यहां भी है, तो मेरा मकसद देवबंदियों का दिफा करना या अहले हदीसों की मुखालफत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये बताने कि फिरकों की बुनियाद हमने नहीं रखी है, देवबंदी हमारा नाम नहीं है, शुरू से हम मुस्लिम ही हैं, हाँ फिका में अबू हनीफा को फॉलो करते हैं, तो देवबंदी हमारा नाम पब्लिक ने रखा है, और रखा क्यों है बरेलवियों से फर्क करने के लिए, जैसे सुन्नी हम नहीं है, साहबा ना शिया थे ना सुन्नी थे, लेकिन सुन्नी हमारा नाम पब्लिक ने रखा और फिर उलमा ने एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, क्यों रखा, शियों से फर्क करने के लिए, वरना सुन्नी जैसे हमेशा से थे ऐसे हनफी भी नबी के दौर में भी थे, शाफी भी थे, इस माना में नहीं थे कि इमाम शाफी को वो तो इमाम शाफी तो आए बाद में, उन मसाइल में इमाम शाफी के मसाइल भी कुरान और सुन्नत से साबित हैं, इमाम अबू हनीफा के मसाइल भी कुरान और सुन्नत से साबित हैं, तो इस माना में ये चारों फिका जो है नबी के दौर से चले आ रहे हैं, समझता है कि नहीं समझता है, अबे तेरी शादी क्या, तू ही आया थे दुनिया में जो दूल्हा बनाया, बार बार टोक रहे शादी कराओ शादी कराओ, हमारी भी शादी हुई थी भाई, चल बे कौन है भाई, नहीं अब इसकी थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा मैं, इसको तपाऊंगा मैं, ये तीन पर्चियां पढ़ लूं, नहीं नहीं अभी दूसरी की बातें ना करें, ये सुसर बैठे हुए हैं बहुत मुनासिब नहीं है बिल्कुल, बस मैं तीन पर्चियां पढ़ लूं फिर इसका निकल पढ़ा कपड़ा कपड़े पहना लिया तो उन्होंने जल्दी है ना दूल्हे की अब शादी देर हो रही है भाई, तीन दफा वॉशिंग मशीन से पानी गुजार दिया तो कपड़ा पाक हो गया, क्या नपाकी थोड़ी लगी हो ज्यादा लगी हो, बस करो सवाल मत दो, ये मारेगा पकड़ के मारेगा, बोलेगा बर्दाश्त की इम्तिहान मत लो, मेरा कुरान में मुसलमान क्या हो गया देवबंदी, इसलिए हम अपने नाम के साथ देवबंदी लगाते भी नहीं, मुसलमान ही कहा करो हमें, मैंने तो हटवा दिया है। लड़की के लिए कोर्ट से तलाक लेने का शरी तरीका कि एक वकील कहता है कि ये कार्रवाई कानूनी तरीके से फौरन करूंगा, जबकि दूसरा वकील कहता है इसमें कुछ अरसा लगेगा। अबे भाई शरी तरीका कोर्ट से खुला लेने का क्या है वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। पहली बात, औरत दो गवाहों से साबित करे मुझ पर इस नौयत का जुल्म हो रहा है। सबसे पहले तो उलमा से राबता करे कि मैं अपने शोहर से अलहदगी चाहती हूँ, क्यों चाहती हूँ, ये भी रीजन वैलिड रीजन हो। वैलिड रीजन क्या होता है? नामर्द है या नान नफका नहीं दे रहा या बेतहाशा मारता पीटता है, कोई वैलिड रीजन हो तो वो बताए। तो उलमा फिर उसको बताएंगे, दारुल उलूम कुरंगी चली जाए, जामितुर रशीद चली जाए, बिनोरी टाउन चली जाए, बड़े बड़े मदारिस हैं, कहीं भी चली औरत जाए तो लिख के वो बताए कि भाई सॉरी। तो उलमा पहले उससे पूछेंगे भाई क्यों चाहती हो खुला, कोई वैलिड रीजन, खुद उलमा उसको बता देंगे आपकी ये रीजन वैलिड रीजन नहीं है। अगर कोई वजह ना हो, यानी शोहर कोई जुल्म नहीं कर रहा लेकिन औरत कहे कि मुझे पसंद ही नहीं है, मैंने रहना ही नहीं है, तो फिर उलमा उसके शोहर को बुला के कह देंगे भाई छोड़ दो, उसको नहीं रहना चाहती। अगर वो छोड़ दे तो किस्सा ही खत्म, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं छोड़ता फिर उलमा कहेंगे भाई आपको अपने शोहर के साथ रहना पड़ेगा, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और कोई खुला की वैलिड रीजन यानी तनसीख निकाह की वैलिड रीजन भी नहीं। और अगर वैलिड रीजन हो, उलमा चेक करके देख लें भाई औरत के ये कह रही है, तो फिर उलमा उसको खुद तरीका बता देंगे। वो तरीका यही है कि दो गवाह लेके कोर्ट में जाए, केस करे और दो गवाहों से ये साबित करे कि मेरा शोहर ये जुल्म मुझ पे कर रहा है, लिहाजा मेरे शोहर को बुला के या तो उसको ये जुल्म से रोका जाए, पाबंद किया जाए, या उसे कहा जाए मुझे छोड़ दे। अदालत शोहर को नोटिस भेजेगी, वो नोटिस शोहर को मिलना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि वो अननोन नंबर पे नोटिस भेज दिया पता ही नहीं। वो शोहर को नोटिस मिले, शोहर को पता चल जाए, शोहर अदालत में आके केस की समाअत करे, साबित कर दे कि ये जुल्म मुझ पे नहीं हुआ तो ठीक है, सॉरी मैं नहीं कर रहा जुल्म तो ठीक है, अदालत केस को खारिज करेगी। और अगर साबित ना कर सके, साबित हो जाए उसके ऊपर कि ये जालिम है, तो अदालत उसको कहेगी आप इसको डिवोर्स दें। कुछ जुल्म तो ऐसी नौयत के होते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, जैसे नान नफका नहीं दे रहा तो फिर अदालत कहेगी भाई अब आप बैंक में चेक की शक्ल में देंगे आप, और अदालत में जमा कराएंगे नान नफका। वो किसी चीज पे राजी नहीं होता तो फिर अदालत क्या करेगी, उसको तनसीख निकाह की डिग्री जारी कर देगी। अगर औरत ने दो गवाहों से जालिम होना साबित कर दिया, कोर्ट ने नोटिस भेजा शोहर के पास, शोहर को नोटिस मिल गया और शोहर नहीं आ रहा, जानबूझकर ढीठ बना हुआ है, तो भी ये इसकी अलामत समझी जाएगी कि शोहर ने मान लिया है कि मैं जालिम हूं, तो भी वो अदालत तनसीख निकाह की डिग्री जारी कर सकती है। तो कोई वैलिड रीजन होना सबसे अहम पॉइंट ये है कि रीजन वैलिड हो। वैलिड रीजन के बगैर सिर्फ ये है कि मुझे गफार पसंद है, सत्तार पसंद है, वसीम पसंद है, ये मुझे अपने मियाँ की शक्ल पसंद नहीं है, ये तलाक की तो रीजन बन सकती है। जैसे नबी के दौर में ऐसे ही एक सहाबी ने कहा मुझे अपने शौहर की सूरत पसंद नहीं है, तो नबी ने उनके शौहर को बुला के कहा इनको डिवोर्स दे दो, उनके शौहर ने दे दी तो ठीक है। तो अगर शौहर डिवोर्स देते फिर तो शक्ल पसंद ना हो, कुछ भी पसंद ना हो, आप कह सकती हो। लेकिन अगर ये नहीं है तो भाई फिर ऐसा नहीं होता, जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकता। इतना पावरफुल जज को अल्लाह ने नहीं बनाया, ये ताकत तो नबी के पास नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आई हैं, बार बार कह रही हैं कि मैं शौहर के पास जाना चाहती हूँ, आपने नहीं भेजा। इसी तरह नबी के पास जब केस आए हैं तीन तलाकों के, तो आपने उसको नाफिज किया है, तो ये नबी के पास अथॉरिटी नहीं थी तो जज के पास कहां से आ गई। हजरत हम दोस्ती, हम दो मुल्तान से आए हैं आपसे मिलने, तीन दिन से आपसे मिलने के लिए, मेरा भी बता दिया, बिल्कुल सिग्नल काम नहीं कर रहे, मुझे जाने दो भाई, बाद में मिलेंगे, अभी एक से मिले ना तो लाइन लगेगी मिलने वालों की, इसलिए अभी मैं बहुत थका हूं, तो फिर असर के बाद इंशाल्लाह कोशिश करते हैं।